بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باہر جو مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ آج دیر میں آئے ہیں. دیر میں نہیں آیا ہوں, وقت پہ ہی بیٹھا ہوں, دو منٹ پہلے بیٹھا ہوں. مگر ایک صاحب کی غلط حرکت پر ذہن کو ذرا ذہنی انتشار ہو گیا, تو اس لیے اسے ایک جگہ جمع کرنا چاہ رہا تھا, تھوڑی دیر کے بعد بیان ہوا, ورنہ وقت سے پہلے ہی بیٹھا ہوں. الحمدللہ آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ کبھی لیٹ آیا ہوں, اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. نفس کے متعلق بیان ہو رہا ہے, یہ چوتھا ہفتہ ہے نفس کے متعلق بیان کا. پہلے نفس کی قسمیں گنائی گئیں, اس کی عادتیں بتائی گئیں, اور اس طرف توجہ دلائی گئی, اور اپنے آپ کو بھی میں نے متوجہ کیا کہ ہمارے پاس کون سا نفس ہے. آج پھر اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے اس میں رمضان کی تیاری کے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو ہو جائے. دعا کیجیے اللہ باتیں کہنے کی توفیق دے, جس کی ہم سب کو بہت ضرورت ہو, اور سننے کے بعد اخلاص کے ساتھ عمل کی بھی توفیق ہو جائے. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھا ہے, جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی طرح ہے. جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی طرح ہے. آگے اور فرما رہے ہیں, اور خواہش کی پیروی مت کر, بس یہ تجھے اللہ تعالی کے راستے سے بھٹکا دے گی. یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. آگے ایک جگہ فرما رہے ہیں, وہ یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے دبا, اور وہ بامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا. بھائی یہ نقطہ صحیح کر رہے ہیں, کیونکہ نامراد تو نہیں ہوا جس نے اس کو دبایا, وہ تو بامراد ہوا نا. بولو بھائی مولوی صاحب, تو اس میں یہ نقطہ غلط لگ گیا ہے. بولے مبین صاحب چہرہ دکھائیے, بالکل پریشان نہ ہوئیے, ہمیں کوئی شکایت نہیں کہ آپ اتنے دن کہاں غائب رہے, کسی کام میں رہے ہوں, سب کی اپنی مشغولی ہوتی ہے. اس لیے ادھر متوجہ رہیے اور سنیے غور. وہ یقیناً فلاح پا گیا, اللہ اپنے پاک کلام میں یہ بات فرمائے کہ وہ یقیناً فلاح پا گیا, تو کیا اللہ کی کسی بات میں شبہ ہے کہ یقیناً لگایا؟ کہہ دیا فلاح کو پا گیا, فلاح کو پہنچ گیا تو پہنچ گیا, یقیناً کہ اللہ کی بات ہے یقیناً ہوگی. لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ متوجہ ہو جاؤ, میں اتنا سچا ہوں اور میں سب کچھ جانتا ہوں, مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے, کس عمل کے بعد کیا ہوگا, جو کہا یقیناً ہوگا, لیکن اس کے ساتھ یقیناً لگا کر فرما رہے ہیں, وہ یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, اور وہ بامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا. پچھلے تین ہفتوں کے بیان میں جو نفس کے متعلق ہوا, یہ تو بتائیں کہ کچھ فائدہ ہوا, کچھ نفس سے مقابلہ ہوا, ہار گئے نفس سے یا جیتے, ہوا کیا؟ हम तकलीर तो करते नहीं, इसलिए हम पूछ रहे हैं बताएं तो कुछ कि हुआ कुछ फायदा। नफ्स ने हमला किया, गुनाह की तरफ ले गया, तो उससे कुछ झगड़ा किया आपने, लड़ाई किया कि तेरी बात नहीं मानूंगा, या जैसे हाथ पैर पहले ढीले थे अब भी ढीले छोड़ दिए, क्या है कुछ बताएंगे आप हजरात, कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ? हाँ, लड़ाई हुई, नफ्स से लड़ाई हुई कि नहीं हुई? अच्छा, नफ्स से लड़ाई हुई जीते या हारे ये बात की बात। पहले ये समझ में आया कि नफ्स हमारा दुश्मन है, इसने मुझे इतने साल तक हलाकत के रास्ते पे डाला है और हम उसके ऐसे शिकार के मुझे कभी ख्याल भी नहीं हुआ कि इससे लड़ना चाहिए, ये क्या कम फायदा हुआ, ये क्या कम फायदा हुआ? क्यों मौलाना? अगर इसको इसकी पहचान तीन हफ्ते के बयान से हो गई हो कि हमारा कोई दुश्मन है और हमें उसे कुछ लड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, और कुछ हाथ पैर ढीले न किए हों, कभी एक हफ्ते ये तीन हफ्तों में कुछ लड़े हों, भले वो गालिब हुआ हो, तो आप गौर करेंगे तो पिछली पूरी जिंदगी ही गौर कभी नहीं किया इस तरफ कि नफ्स कोई है और हमारा नुकसान कराना चाहता है, तो इतनी बड़ी गफलत तारी थी, अगर इतनी भी दूर हो गई तो कुछ काम की बात हुई या नहीं हुई? मुझे तो फोन आने लगे, इस बात के फोन आने लगे कि इतना अहम मजमून और बयान ही नहीं होता। पहले बयान हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की दी तौफीक से पहले भी इसका बयान हुआ है, हम नई बातें कहां से लाएंगे, वो तो सब बिदअत बन जाएगी, हम तो पुरानी बातें दोहराएंगे। लेकिन इसका बड़ा अफसोस है, अपनी जिंदगी देखकर कहूं, मुतल्लिकीन की कहूं, क्या कहूं, के सुनने के बाद बहुत कम लोग हैं जो अमल करते हैं। इतनी बड़ी गफलत कि अपना नुकसान बर्दाश्त करते रहें, लूटते रहें, ये समझ में बात आती नहीं कि इतनी बड़ी गफलत क्यों है। मेरे मोबाइल पर किसी ने एसएमएस किया हदीस, जिसका मतलब यह है कि ताज्जुब है उस शख्स पर, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ताज्जुब है उस शख्स पर जिसे अपनी गफलत का इल्म हो और फिर उससे वो ना निकले, ये है उसका मफहूम। गफलत का इल्म होने के बाद फिर गाफिल रहे, ताज्जुब। क्यों जागे, क्यों नफ्स से लड़े, क्यों तैयारी करे? मोमिन को इसलिए करना है कि इसका यकीन है कि मरने के बाद दो घर बनाए हैं अल्लाह पाक ने, एक का नाम जन्नत है, एक का नाम जहन्नम। दुनिया में गफलत की जिंदगी गुजार कर, नफ्स शैतान के धोखे खा खा कर, ईमान लुटा कर गया, हमेशा की जहन्नम, अल्लाह हिफाजत करे। और ये गारंटी है नहीं कि ईमान वाला ईमान ईमान के साथ ही उठेगा, ये बिल्कुल गारंटी नहीं। इसके आमाल खुद बताते हैं इसे कि देख तू कौन से रास्ते पे जाता है। नफ शैतान उस पर जल्दी से पर्दा डालते हैं, अरे कहां यहां की सोचता है, फिर ये पलट आता है, फिर गफलतों में चला जाता है, ये करते करते जिंदगी गुजर गई। निगाह उठती है तो दूसरों पर उठती है, अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, लोगों की कमियां दिखाई देती हैं। उस शख्स की इस्लाह हो ही नहीं सकती जिसको दूसरे की कमी दिखाई दे और अपनी कमी दिखाई ना दे, उसकी इस्लाह नहीं हो सकती। इस्लाह के लिए जरूरी है कि अपने अयूब खुल जाए। खुल गई जब से चश्मे बसीरत, अपनी नजरों से खुद गिर गए हम, हमें तो याद नहीं रहते अशार, लेकिन ये मौके से याद आ गए। खुल गई जब से चश्मे बसीरत, अपनी नजरों से खुद गिर गए हम। जब बसीरत की आंख खुलेगी तो सबसे ज्यादा कम अपनी निगाह में हम नजर आएंगे, और जब ये नजर आया तो रास्ता खुला फलाह का, रास्ता खुला फलाह का। और जब तक ये नजर आया कि सब कम है, तब तक इसके लिए वो फलाह का रास्ता बंद है। और नफ्स यही धोखा देता है कि सबके अयूब दिखाता है और खुद के अयूब को छुपाता है। अपने ऐब को सबसे ज्यादा जानने के बावजूद भी ऐसी चश्म पोशी कि खुद अगर देखे तो कहेगा मैं कितना बड़ा शिकार हो चुका हूं नफ्स का, कि जब जानता है कितनी खराबी है और मुकाबले में किसी की बुराई नजर आती है तो मेरा तो तजर्बा है अपने नफ्स को समझाने के लिए, तजर्बा हुआ कि गिनती कराया। क्या गिनती कराया? कि उसके अयूब गिनो, जो तुम्हें बुरा नजर आ रहा है उसको अयूब गिनो। तो गिनती हुई तो 5-6 ऐब से ज्यादा किसी का नजर आया नहीं, जितने अब तक हमने देखे अपने साथियों में, मौज माशरे में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, जहां जहां देखा। बहुत नफ्स ने दिखाए ऐसे हैं, ये इतने खराब हैं, बड़ों की बरकत, अल्लाह की मेहरबानी, और बड़ों की बरकत अब भी लोग बड़ा बनाते हैं, बड़ों के पास जाते हैं, लेकिन खुदराई के साथ अपनी राय को फना नहीं करते। ये नफ्स के वो शिकार है जो इंतहाई धोखे में कि बड़ा भी बनाया लेकिन अपनी राय की फनाइत नहीं है। हमारी एक राय है, इसीलिए अहले इल्म से तो खासतौर से कहता हूं, मुझसे बैठ मत हो, तुमको नफ्स इसी तरफ से उछलेगा कि भाई सब ये थोड़े ही जानते हैं, हम भी तो कुछ जानते हैं, सब ये थोड़ा ही जानते हैं, हम भी तो कुछ जानते हैं, हमने इतने साल पढ़ा है तो हम नहीं जानते क्या कि इनकी सब मानेंगे? पीर बना लिया ठीक है, उनकी सब वहां मही नहीं मानी जाएगी जहां शरीयत के खिलाफ होगा, और जहां इलाजन कोई बात और शरीयत के खिलाफ ना हो, मिजाज के खिलाफ हो तो मानी जाएगी। यही वो मिजाज के खिलाफ ना मानना नफ्स परस्ती। अरे का बहुत गुंजलक बात हो रही है, साफ साफ हो रही है, मजमून खुश्क है, और खुश्क इसलिए है कि जब दुश्मन का तस्करा हो तो गुस्से में आते भी खुश्क होती है, दिमाग में भी खुश्की आती है। ये पूछिए हकीम साहब बैठे हैं, उनसे पूछिए मिजाज में, जब दुश्मन का तस्करा बार बार हो तो आदमी को टेंशन बढ़ेगा तो मिजाज में खुश्की आएगी, मैदे में खुश्की आएगी, दिमाग में खुश्की आएगी। इतना तो मैं सीख चुका हूं बड़ों से अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मजमून जो खुश्क है वो इसलिए है कि दुश्मन का तस्करा है, दोस्त के तस्करे से फरहत हासिल होती है, दोस्त के तस्करे से। अरे भाई ओ हकीम साहब जरा कुछ ताइद तो करो, हाँ? ये बहुत बड़े बड़े मौलवी साहबान यहाँ बैठे हैं, सही कह रहे हैं ना? दूर से सुनने वाले समझ लें कि यहाँ बहुत सारे उलमा हैं और बड़े काबिल भी हैं, और बड़े बड़े काबिल हैं, काबिलियत में, बयान में, कुरान हदीस में, तफसीर में, फिका में अपना एक मुकाम रखते हैं। ऐसों को कहता हूँ पढ़े लिखो के पास जाओ, ताकि जब नफ्स शैतान वसवसा डाले कि शेख पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो वहीं चले जाओ जहां पढ़ा लिखा है, यहां क्यों आए? लेकिन कहूंगा सुनाऊंगा, शकील को समझ में आ जाए, शकील के बेटे मुफ्ती अब्दुल रहीम को समझ में आ जाए, हाफिज अब्दुल्ला मौलवी बिलाल को समझ में आ जाए, ساجد کو، ثاقب کو، مسعود کو سمجھ میں آ جائے، اور مولوی عالم صاحب آتے ہیں بیچارے پرتاپ گڑھ سے، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، وہ ہیں کچھ مٹائے ہوئے تھوڑے سے، باقی بھی مٹ جائے گی انشاءاللہ. گاؤں میں رہتے ہیں، سنا مسجد بن رہی ہے تو حضرت کے لیے 3000 روپے چندہ لائے، آپ سمجھتے ہیں؟ میں حقیقت کہتا ہوں 3000 میرے نزدیک کوئی 3 لاکھ دے اس سے بہت زیادہ ہے، کوئی 30 لاکھ دے اس سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ گاؤں ایک دم گاؤں ہے، وہاں سے کہاں سے پیسے نکلیں گے؟ اور سمجھداری کی بات یہ ہے الحمدللہ کہ ایک سیٹھ نے ان کو نوٹ کا بنڈل دے دیا اور کہا مولانا جتنا جی چاہے لے لو. یہ ہے رکھنے کا سسٹم تو اچھا کچھ ہے نہیں، اس طرح سے سنبھالنا پڑتا ہے، اور کھسکتا رہتا ہے ذرا کان ڈھکا ہے، یہی بڑھیا ہے. اے یہ ارے چل، ہم دیہاتی بھائی بھائی، ہم دیہاتی بھائی، ہاں کام ختم. وہ ہر دم چونچ نکالو ادھر ادھر، یہ سر پر رومال رکھا ہو جو عرب لوگ لے کے چلتے ہیں پوری نماز میں، اللہ ماشاء اللہ اکثر اس کی چونچ درست کرتے ہیں. ان کا دیکھ ہی دیکھا جو ہندوستانی رکھ لیتے ہیں وہ بھی نماز میں رومال میں ہی رہتے ہیں. سنت کر کے رکھتے تو سب سے زیادہ سنت دل نماز میں دل لگانا ہے تو ذہن دماغ پہ نہیں جاتا، خوبصورت لگتے ہیں اس نیت سے رکھتے ہیں تو کھسکاتے رہتے ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے، نفس کے شکار ہے. اور ہم دیہاتی مانا یہ ہے دیکھا کیسا رکھ، کیسے رکھ لیا، دیکھو یہ ہو گیا کام، جب کان ہی ڈھاکنا، یہ کہ ہر دم کھسکا سرکتا رہتا ہے. ارے سرکتا رہتا ہے سرکنے دوستو، باندھ دیں گے ہم ایسے. یہ مضمون قریب والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، دور والوں کو نہیں. ہم نے سر پہ رومال رکھا تھا اس انداز سے جیسے رکھا جاتا ہے عام طور سے، شہر والے رکھتے ہیں، عرب والے رکھتے ہیں، علماء رکھتے ہیں. دیر میں غسل کیا، اس کی ٹھنڈک، اور باہر یہاں موسم ایک دم ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کی ٹھنڈک کا اثر، بہت چھینکیں آئیں تو کان ڈھانکنا ضروری سمجھا، تو یہ سرکنا شروع ہوا بار بار، اور ہمارے دل کو مضمون سے سرکا کر رومال تک پہنچنے لگا ہمارا ذہن. تو اس لیے ہم دیہاتی آدمی، ہم نے اسے لپیٹ لیا جیسے دیہات والے لپیٹتے. بات نہیں لپیٹوں گا ابھی، بات تو ابھی جاری رہے گی، بات سنیے. ایک روٹی پکانے والی عورت جو ہماری کالونی میں گھوم گھوم کر روٹی پکاتی، کسی صورت سے اس کے گھر کا خرچ چلتا ہے دقتوں کے ساتھ، اور اللہ ہمیں مال دے اور اس کی توفیق دے کہ جن کے دروازوں پر لے کر کھڑا رہنا پسند ہو اس کے دروازے پر پہنچا دے کہ قبول کر لو. اس نے کہا کہ ہم 300 روپے بابا کی مسجد میں دیں گے. تاجر نے کہلایا کہ 300 نہیں، 100 تمہارا لاکھوں پر بھاری ہے، 100 ہی دے دو. اس لیے مودی عالم لے کر آئے وہاں گاؤں سے 3000. رات کو میں بہت خوش ہو گیا، سرہانے رکھا تاکہ صبح اٹھوں پھر اس پہ نگاہ پڑے تو دیکھ کر پھر خوش ہو جاؤں کہ یہ پیسہ مولی عالم لائے ہیں. اور بمبئی کے عالم میں رہ کر کسی سے مانگتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے، اللہ کے رسول کو شرم نہیں آئی تھی مانگتے ہوئے؟ نفس کے شکار ہے، نفس کے شکار ہے. شیخ کے پاس خدرائی کے ساتھ جاتے. میری ایک رائے ہے، میرا ایک مقام ہے، اور شیخ تجویز کرتا ہے یہ کرو تاکہ تمہارے مقام تمہاری نگاہوں کے نیچے آ جائے. یہ جو مقام بنا ہے اس کو نیچے لاؤ. اللہ کی قسم، نفس کو نہیں پہچانیں گے، رب کو نہیں پہچانیں گے، طے شدہ بات. اور لوٹ کے ایسے وقت خالی پائیں گے جس وقت سب سے زیادہ ضرورت کا دن ہوگا. شیخ بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ میں نے اپنی رائے کو فنا کر دیا، جو چاہے کرو تصرف. اہل علم سے ہے، علم میں دیکھے گا، علم کی روشنی میں کیا ہے دیکھیے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا، اور علم میں جس کا ثانی نہیں ملتا حضرت ماں قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ، उनके वो मुरीद थे, उनके उनके खिदमत में भेज दिया कि लो जाओ मौलाना को दिखाओ, इसलिए कि आलिम तो वही है, वही बताएंगे। तो एक इबारत गलत लिखी थी ऐसी जो इल्मी एतबार से सही नहीं रही होगी। हजरत नानूती रहमतुल्लाह ने वो वहां निशान लगाकर अर्ज कर दिया कि हजरत ये इबारत मेरी समझ से बाला तर है। ये नहीं कहा कि आपने क्या लिखा है, ये नहीं कहा आपने क्या लिखा। अल्लाह नफ्स के शर से बचाए, इसके धोखे से बचाए, बड़ा ही साथी। उसका फन है कि लूट जाए और पता न चले, वो लूट ले और पता न चले, यही तो उसका फन है। पता कब चले? आखिरत के हिसाब किताब के दिन पता चले। हाय मैं तो सब लूटा कर आया। और लूटता वही है जिसकी निगाह दूसरों पर रहती है और अपने को भूलता है, वही लूटता है। बाजे कुछ जगह तो पहुंच जाते हैं कुछ दूर तक इस रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को पाने में जद्दोजहद करते हैं, कोशिशें करते हैं, बाजी बातें मशायख से पूछते हैं, कुछ दूर तक तय कर लेते हैं। लेकिन अब नफ सोचता है अब कौन सी चाल चलूं, ये तो रास्ते पर पड़ चुका और चल चुका, तो फिर वो नफ्स है, वो तो सब पन जानता है। जो अंबिया के दू बदू हो गया हो, ये नफ्स और शैतान, अल्लाह इनके शर से बचाए, एक सेकंड गाफिल नहीं, हर वक्त वार करने को तैयार हैं, नई नई चालें इनके पास हैं, नए नए हरवे इनके पास हैं। हालात को देखकर, औकात को देखकर, इल्मी लियाकत को देखकर, आमाल पर बहुत सारे दवाम को देखकर इस तरह का वार करना कि पता न चले ये नफ्स और शैतान आए, ये इनका फन है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। बचता वही है जिसने अपने नफ्स को पहचाना और अपने शेख के सामने अपने आप को जलील और रुसवा किया और उनके हवाले कर दिया कि जैसे चाहो उठाओ पटको मारो जो चाहे करो, पिछला हो जाए बस ये चाहता हूं। बनता तो वही है, खुदराई के साथ कोई कभी बना नहीं करता। ये बहुत बड़ा मर्ज है जो शैतान में लगा था। खुदराई तो थी वो कि मेरी राय ये है कि मैं अच्छा हूं, मैं आग से बना हूं। आदम कैसे अच्छे हो सकते हैं, मिट्टी से बने। उलमा ने आग और मिट्टी में आग कितनी वजूहात की वजह से कम है और मिट्टी कितनी वजूहात की वजह से बढ़ी हुई है, इसको लिखा है किताबों में, आप पढ़िए। एकदम पैदल ना समझिए, कुछ हमने भी देखा है, इशारे काफी है सब बताने के लिए। और दूर से जो उलमा सुन रहे हैं वो फोन करते हैं, बोलते एक एक इशारे में बड़ी बड़ी तकरीरें हैं, समझने वाला समझे। ये नफ्स है, अजीब है, अजीब। और इसी से मुकाबले का नाम मुजाहिदा है। क्या है? इससे मुकाबले का नाम मुजाहिदा है। और इसी मुजाहिदे पर हिदायत है, इसी मुजाहिदे पर चीजों के हासिल करने के लिए तो सबब अख्तियार किया जाता है ना। तो हिदायत का सबब जो है मुजाहिदा है। नफ्स के खिलाफ किया मुजाहिदा किया, शैतान के खिलाफ किया मुजाहिदा किया, इनकी बात किया मान लिया, मुजाहिदा नहीं किया। और हिदायत का दरवाजा अल्लाह का किसी घड़ी बंद नहीं होता। उलमा बैठे जरा बता दे कहीं से साबित है अल्लाह ने हिदायत का दरवाजा बंद कर दिया कि मैंने बंद कर दिया, अब मैं दिन भर हिदायत का रास्ता खोला हूं, अब रात को बंद रहेगा, रात को खोला दिन को बंद रहेगा, इतने घंटे काम हुआ अब बंद रहेगा, कोई बताए? पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने तो इसकी तहकीक नहीं की, आप लोग बता दें है कहीं। हिदायत का रास्ता एक वक्त बंद है, बताइए किस वक्त बंद है? अब बताइए, बहुत सारे से मौलाना बैठे हैं, हिदायत का रास्ता एक वक्त बंद है। अच्छा मैं ही बताता हूं, ज्यादा इम्तिहान नहीं लेता। जिस वक्त मौत को देख लिया और ऐसी हालत हुई कि अब मर गया, बस उस वक्त बंद है, अब बंद तेरे लिए है ना। नहीं, अहले इल्म तकरीर सुनते हैं ना, कहेंगे बंद तो है, तुम क्या बोल रहे हो बंद नहीं है। अल्लाह की कसम बंद नहीं है, इसने बंद करवा दिया है, बंद तो अब भी नहीं है। बंद कहाँ है, तूने ही बंद करवा दिया कि कहां तक, इससे पहले कह देता तो हिदायत दे देता है? तो तूने तो बंद करवाया। अगर बंद होता तो तेरी इस हालत से हटकर पूरे आलम पे निगाह डाली जाए तो सबके लिए तो खुला है। क्यों मौलाना, ये बात नहीं। अगर ये बंद है तो तेरी इस हालत को छोड़कर जब सब जगह खुला हुआ है, सारे आलम में खुला हुआ है, तो बंद कहां है ये तो बता। ये तो तेरी हालत की वजह से बंद है। दरूद पढ़ो एक दफा। कम दिया तुम पी लो, डॉक्टर को ठंडा नहीं। असल बात यह है कि इस वक्त जिसमें ताकत नहीं है बोलने की, बहुत ताब हो रहा है मुझे बोलने, बहुत मेहनत हो रही है। दुआ कीजिए, मुसलसल दुआ कर दीजिए, अच्छा हो जाऊं, बयान वयन के लायक करो, अमल के लायक हूं, और कुछ नहीं होता तो इतना तो रहो। पैर यहां धो लो, इस तरफ पैर धोना हो तो यहां धो लो, और अगर नहीं कुछ लगा है तो मेरे कहने से धोने मत जाओ। कुछ ना लगा हो तो मेरे कहने से धोने मत जाओ। निगाह इधर उधर देख रही थी, कुछ तलाश कर रही थी, मैंने कहा कहीं नल की तलाश तो नहीं है। निगाहें जब घूमती हैं तो दिल कुछ ढूंढता है, तो मैंने कहा कुछ ढूंढ रहे हैं तो बता दूं। और इस वक्त का मौसम यह कि बाहर से आने वाला जब ऐसा ऐसा नजर घुमाए तो शायद पानी ढूंढता हो पैर साफ करने के लिए। इसलिए इस वक्त बोलना मेरे लिए बहुत ही मशक्कत हो रही है, मुझे बहुत मशक्कत हो रही है। बिल्कुल बयान की कुव्वत नहीं है, दिल पे बहुत जोर पड़ रहा है और कमजोरी की वजह से जोर लगाना पड़ रहा है। कल दिन भर ऐसा बीमार पड़ा रहा हूं कि मगरिब के वक्त उतरा हूं और अब हिम्मत है नहीं बोलने की, मगर अब लोग आए हैं तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूं। मगर आप लोग सताए नहीं मुझे, यानी जहनी इंतशार में ना मुब्तला हो, इधर ही रहें। हमें सताने से क्या मतलब है कि आप जहनी इंतशार में किसी और को ना सोचे, अब मुझे ही देखें और मेरी सुने और मेरी ही बात पर गौर करें। मैं मुकर्रर हूं नहीं कि मुझे बहुत सी चीजें याद हैं मैं बयान कर दूंगा, मैं मुकर्रर तो हूं नहीं, मुझे तो बात आपकी तवज्जो की वजह से आती। क्या कह रहा था? हाँ, कि मौली आलम साहब को एक साहब ने नोट का बंडल दे दिया और कहा आप इसमें से जितना चाहे रख लें, मगर जब अकल कुछ आती है, तकवा आता है, तो कुछ फहम तो आ ही जाता है आदमी को। इन्होंने सोचा कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वसूल अपने यहां बनाया था कि हदिया लेने में एक दिन की आमदनी से जायद हदिया नहीं लेते, तो इन्होंने कहा भाई एक दिन की आमदनी जो तुम्हारी है वो हमें चंदे में दे दो। समझदारी का काम किया कि नहीं किया? नफ्स के धोखे की बात हो रही है, अल्लाह करे हम सब उस धोखे से निकल जाए। हर वो आदमी, मैं हूं, आप हो, जितने बैठे हैं ये हैं, बाहर की दुनिया में सुन रहे वो हैं, इस बात को हम सब अच्छी तरह समझ लें कि जब तक हमारे अयूब हम पर नहीं खुलते, और हम अपनी निगाह में कम नजर नहीं आते। लोगों को की अच्छाइयां देखने की तौफीक नहीं होती जब तक हमारे लिए ये रास्ता जो है अल्लाह का ये बंद है। ऐसा आदमी नफ्स का बड़ा शिकार हो चुका है, बड़ा शिकार हो चुका है। एक तो अलामत मैंने ये बयान कर दी है आपके सामने, कुछ और बातें भी वो ये कि कोई बात आदमी जब सुनता है सुनता है सुनता है और बार बार सुनता है तो अगर वो होश में है तो उस बात से मुतासिर होता है और अगर बेहोश है तो मुतासिर नहीं होगा। ये बहुत गौर से सुने, एक नई बात अल्लाह ने अभी आप हजरात की बरकत से डाला है और आगे डाल रहा है। कोई बात जब बार बार आदमी सुनता है, बहुत बार सुन लेता है तो उससे उसका कल्ब मुतासिर होता है। वो तासुर अलग अलग किस्मों का होता है बातों के एतबार से। पूरी दुनिया में एडवर्टाइज का निजाम इसी बुनियाद पर चला है, इतना सुनाओ कि मुतासिर होकर हमारी चीज खरीद लें। और कल एक वकील साहब आए थे परसों जुमा के बयान में, ऐसे ही मजमून कुछ बयान हुआ तो उन्होंने कहा कि एक रिसर्च ये हुई, रिसर्च करने वाले जो हर शोबे के रिसर्च में लगे हुए हैं उसकी उस पर बात आई थी कि फला चीज को इतनी दफा पढ़ो, फला चीज को इतनी दफा पढ़ो, तो ये जो तादाद मुकर्रर किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इसलिए है कि इस तादाद इतनी दफा ये बात इसके कानों में पहुंचेगी तो इसकी जिंदगी में इतनी तब्दीली आएगी। और चीजों का चीजों पे तो ऐसा असर है दोस्तों कि कहा ही नहीं जा सकता। हमें मौका नहीं है, हमारा फुर्सत से हम जब तक हम तन्हाई के औकात नहीं निकालेंगे, दोस्ती कम बातें कम, मखलूक कम खालिक ज्यादा, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। ये तो जाहिर नमाज रोजा और इसकी फिक्र नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो। याद रखिएगा जहां मैं अभी हूं कि जिंदा मुर्दे पर असर नहीं होगा, बेहोश पर असर नहीं होगा बली बात का, कोई बात की तकरार का, और जो जिंदा होगा होश में होगा उस पर असर होगा। ये आगे कुछ बात इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से कहूंगा, अभी यहां सुनिए कि ये उन्होंने कहा कि यही बात है कि अभी तहकीक से बात साबित हुई कि कोई बात इतनी दफा सुनाओ तो झूठी बात सच लगने लगती। वो तादा तो भूल गए वकील साहब, उन्होंने कहा कि कोई बात इतनी दफा रिपीट की जाए तो झूठी बात सच नजर आने लगती। लेकिन किसको, जो होश में होगा वो है ना, और जो मुर्दा हो गया होगा बेहोश हो गया होगा उसे तो कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी करो। नफ्स शैतान ने एक ऐसी चाल चला कि जाकिर को अल्लाह के जिक्र में तो लगा दो लेकिन मेरा जिक्र होने ना पाए। जफर साहब, जाकिर को अल्लाह की याद में तो लगा दो जिक्र में, देख लिए तस्बीह हाथ में और दिल गाफिल है। ये जो शिकार हुआ नफ्स का कि तस्बीह हाथ में दिल गाफिल, इसे पता ही नहीं, होश ही नहीं इसे कि हमारे हाथ में कोई वायर कर रहा है और कुछ सुना रहा है। ورنہ یہ اللہ اللہ کرنا تسبیح سے 100 دفعہ بالکل بے اثر ہو رہا ہے تو ہوش میں کہاں اعتکاف پھر ہے. پھر اس نے کہا ایک دھوکہ تو یہ دے دو اور میرا ذکر تو ہونے ہی مت دو. کس کا؟ نفس و شیطان کا. اور بعضوں کو تو بہت تیزی سے ایسی باتیں اعتراض کی یاد آتی ہیں بیان میں, جملہ سنا اعتراض کھڑا. اتنی بڑی تھی حضرت رابعہ, کسی نے پوچھا کیا آپ شیطان کا ذکر نہیں کرتی, تو کہا رحمان کے ذکر سے فرصت نہیں, شیطان کا کب کروں. تو پہلے شیطان کو پچھاڑ دیا تھا اور نفس کو گرا دیا تھا, اس لیے اب رحمان کے رام کا رنگ چڑھا رہی تھی. ہماری آپ کی تصویر نہیں تھی وہ کہ دل سارے عالم میں بھٹک رہا ہے. میاں تصویر تو بہت دور کی بات ہے, جو شرائط کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے شرائط ہے, جگہ کا پاک ہونا, کپڑے کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, یہ ہے نا شرائط ہے نا. یہ ساری شرائط کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے پھر بھی خدا سے غافل ہے, تو نفس سے شکار نہیں تو ہے کیا؟ لیکن کبھی سوچتا نہیں نماز کے بعد کہ میں کہاں لٹا ہوں, کیا ہوا ہے. نہیں, وہ تو اپنے کو پایا ہوا سمجھتا ہے, وہ تو اپنے کو پایا ہوا سمجھتا ہے, تو کہتا ہم پاک ہے. وہ نہیں پائے, یہ نہیں جانتے, اس کو پتا نہیں, وہ کچھ سمجھتا نہیں, وہ کچھ جانتا نہیں. میں ہی جانا ہوا ہوں. ایسی راہ چل رہا ہے کہ کل قیامت میں جب لوٹے ہوئے میں کھڑا ہوگا تو سب سے زیادہ ضرورت کے دن خالی ہاتھ ہوگا, سب خالی ہاتھ. صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ یہ نگاہ جو پڑتی ہے صرف اتنا ہی نہیں کہ ہلکے پن, بلکہ حقارت دل میں آنا شروع ہوتی ہے. جب 10 دفعہ نگاہ ڈال لیتا ہے تو 11ویں دفعہ حقارت شروع ہوتی ہے. یہی ہے تکرار کا اثر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اس لیے اس کے تذکرے کو بھی پسند نہیں کرتے. ہم نے کہا نا کہ ابھی یہ مضمون خشک نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ اس سے کیا فائدہ, ذرا کچھ اور بیان کرو. کیا بیان کرو؟ لوٹ لیا, زندگی برباد کر دیا. اللہ تعالی اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں وہ یقیناً فلا پا گیا. ایسا شخص فلا کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, اور وہ بامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا. تو اب ذرا آج کے بعد اپنی ذات پر کچھ غور ہوگا, آج کے بعد اور ابھی بیان کے بعد اپنی ذات پر کچھ غور ہوگا. اور آگے سنیے, جب غور ہوگا اگر اس کی توفیق ہو گئی تو اس میں دو باتوں میں سے ایک بات پیدا ہوگی غور کے بعد. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال فلا سے تو ہم اچھے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال بات تو بہت صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, مگر فلا سے ہم اچھے ہیں, یہ اچھا نہیں ہو سکتا. کھل گئے جب سے چشمے بصیرت, اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم. سمجھے؟ کھل گئی جب سے چشمے بصیرت, اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم. ابھی نہیں کھلی. اگر یہ ہوا کہ مگر وہ, اور دوستو ایک بات یاد کر لو, یہ تینوں راستے لٹنے کے جو ہے نا, آنکھ کان زبان, جب تک اس کا صحیح استعمال ہم خود نہ کریں گے اور جس کے ساتھ رہتے ہیں وہ خود نہ کرے گا, جب تک ہمارا راستہ بند ہے. کیونکہ ہم نے ابھی قدم ہی نہیں اٹھایا. ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے, ان کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, اٹھے گا دوسرے کے پاس جا کے ہماری برائی کرے گا. ایسوں کی صحبت سے بہت اجتناب رکھنا چاہیے. ایک آدمی نے غلام بیچا اور یہ کہا लेकिन बहुत मशहूर है कि लोगों के पेट फूलते हैं, यानी बातें हजम नहीं होती, उनके पेट फूलते हैं जब तक वो कह नहीं लेते, जब तक उन्हें चैन नहीं होता। और यहां की वहां लगाने वाले, हमारे जानने वालों में एक जिनका तस्करा पहले भी आपसे बहुत किया है, बार बार किया है, और उनका बेटा पूछता है भैया जवान में, हे अब्बा ये आदमियां तोरा बदनाम का है बार बार ले। उनका नाम है रईस भाई। उनकी एक अजीब आदत, कभी किसी का तस्करा करते हमने नहीं सुना, चाहे दुश्मन के पास जाते हो और वहां हमारे खिलाफ सुनकर आते हो, हमने नहीं सुना। हम तो कह सकते हमने नहीं सुना, क्या हम शकील के दोस्त थे लिहाजा दुश्मन के पास से आए कहे नहीं। लेकिन भागों को ये आदत है, ये नफ्स के बहुत बड़े शिकार, ये सब शिकार किया उसने। अच्छा मुश्किल क्या है कि जो अपने को शिकार समझता नहीं वो ऐसों की मुलाकात बाकी रखता है और रात दिन लुटता रहता है इसके जरिए से, फिर भी अपने को बचा हुआ समझता है। गुलाम बेचने वाले ने गुलाम बेचा, लेकिन ईमानदार था, उसने कहा देखो भाई तुम खरीद के तो लेकर जा रहे हो, लेकर जाओ, लेकिन मैं मुसलमान आदमी हूं इसलिए इसका ऐब बता देता हूं। इसका एक ऐब है, ये यहां की बात वहां करता है। क्या ऐब है? ये यहां की बात वहां करता है। उसने समझा कि ये तो कोई बड़ी आसान हल्की सी बात है, ये तो कोई बुरी बात है नहीं, और होगी तो क्या, अभी माशरे में तो चलता है, इसमें क्या हर्ज की बात। और ये बयान मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जबानी ये बयान सुना, उसके बाद उनसे सुनने वालों ने नकल किया तो उनसे भी सुना, क्योंकि हजरत का बयान अक्सर माशरत पे बहुत होता था, मामलात माशरत अखलाक। हमारा बयान इबादत पर बहुत होता है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, इसलिए कि इबादत से कमाएगा, मामलात माशरत दुरुस्त नहीं हो तो वहां लुटा देगा, तो लुटाने वाले रास्ते का पता बताते नहीं, यहां लुटते हो कमाई कमा कर भेजते हो कि जाओ जब उस रास्ते से चले जाओ वहां जाके लुट जाओ। रूठ जाना ये औरतों की फितरत है, बहुत जल्दी से रूठ जाना, बात बात में रूठ जाना, बात बात में रूठ जाना, ये औरतों की फितरत। और शायद हमारे आपकी जिंदगी के लिए बनाया हुआ मिजाज कि ये रूठी रहे, तुम इन्हें मनाते रहो, कुछ खेल कूद का मजा बढ़ जाएगा, इसलिए शायद बनाया हो। लेकिन जो इनकी सोहबत में बहुत बैठकर इनकी सुनता है, कहा था कानों के जरिए ना, और कानों के बंद को बंद नहीं करता है, ऐसे वक्त ना उसकी जबान को रोकता है ना अपने कान को रोकता है, तो ये अंदर से उसी फितरत का हो जाता है और हरदम बातों बातों में लोगों से रूठा रहेगा। नोट कीजिए सब बातें, आप गौर कीजिए, माशरे में देखिए, अपने को देखिए, अपनी जिंदगियां देखिए, शकील को देखिए, ये भी कितना बिगड़ा हुआ इस माशरे में जो बयान करके सुना रहा है। ये सब मौजू जो बयान के लिए अहमियत रखते हैं, आज हमारी जबानों पर इसका तस्करा भी नहीं है इल्ला माशा। तो उम्मत कहां धोखा खा रही है, कहां लूट रही है, इसलिए नफ्स का बयान हो रहा है कि लूटने वाले को देखिए जरा। जिसकी मुलाकात पे सिर्फ दुनिया का तस्करा हो उसकी मुलाकात से बहुत इज्तनाब करना चाहिए। दुनिया के तस्करे से फायदा ना उठाएंगे, हाँ जहां हम कमाने बैठते उस दुनिया के तस्करा हम करेंगे, दुनिया के दुनिया भर के तस्करे से हमारा क्या लेना देना, जो हमारी फील्ड है उसका तस्करा करो, इसलिए कि काम और काम के बाद फुर्सत तो अल्लाह की याद, काम काम के बाद फुर्सत तो अल्लाह की याद, न कि जमाने की बात। हमारा क्या लेना देना जमाने से, जमाना है तो हर तरह के लोग होंगे, हर तरह काम चलेगा। जब काम है तो काम काम की बात करो, दुनिया नहीं है। एक अच्छी नियत कर लिया तो कोई दुनिया नहीं है। एक आदमी भली नियत से कमाने जाता है, कोई दुनिया नहीं होती, घर से निकलता है नियत करता है कि मेरे बाल बच्चों का नान नफका हमारे जिम्मे कमा के लाना फर्ज है, इसलिए मैं मेरी दुकान पे जा रहा हूं, तो ये कमाई फर्ज की अदायगी के लिए हो रही है।
اللہ کو یہ ناپسند ہے کسی کے سامنے سوال کا ہاتھ بڑھاؤ، اس لیے کمانے جا رہا ہوں. اللہ کا دین ہے زندہ کرنے کے لیے، جہاں ضرورت پڑے گی وہاں مال خرچ کروں گا، اس لیے کمانے جا رہا ہوں. بیوہ یتیم غریب دنیا بھر کی مساجد مکاتب اور ضرورت مند لوگوں پر میں خرچ کروں گا، اس لیے کمانے جا رہا ہوں. اگر یہ کمانے جا رہا ہے، اتنی ساری نیتیں اور بہت سی ڈھیر ساری نیتیں، اس وقت اس کی بات نہیں ہے، اگر اس نیت کے ساتھ جا رہا ہے کمانے تو دنیا میں کہاں گیا ہے. لیکن اس کے بعد یا تو اللہ کی یاد نہیں، اب اللہ کی یاد نہیں دوستوں کی بات، یا تو بیٹھ بیٹھا کر یا تو فونوں پر. او تنگ آ گیا میں دیکھ دیکھ کر. میں پوچھتا ہوں رات شام تک تم نے جو بات کیا اسی کا حساب لگا لو تو نفس کے شکار ہونے سے بچ جاؤ گے. جتنا تم نے کانوں کے ذریعے سنا اسی کا حساب لگا لو تو نفس کے شکار ہونے سے بچ جاؤ گے. کب تک لوٹتے رہو گے یہ تو بتاؤ. ان کانوں کے ذریعے وہ بات پہنچا دی جاتی ہے جو ذہن کو منتشر کرتی، ذہن کو ایک نیا مضمون ملتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے دل سے ایک خیال نکلتا ہے فوراً دوسرا آتا ہے نہیں آتا ہے؟ وہ نکلنے نہیں پاتا، تیسرا اس کی لائن میں کھڑا رہتا ہے، وہ نہیں ختم ہوتا، چوتھا آتا ہے. شام تک کے خیالوں کی جو لائن لگی ہوئی ہے، یہ کیوں آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ انہی کانوں کے سننے کی وجہ سے مضمون تیار ہوا، اسی آنکھوں کے دیکھنے کی وجہ سے مضمون تیار ہوا، اسی زبان کے بول کی وجہ سے کسی کے بول سے کان کے ذریعے پہنچا کہ اپنے بول سے خود ایک نیا مضمون تیار ہوا. بولتا کیوں ہے؟ دیکھتا ہے تو بولتا ہے، دیکھتا ہے تو بولتا ہے. گلی میں داخل ہوا، ارے ماشاء اللہ کیا خوبصورت کلر ہے بلڈنگ کا، دیکھو. اندر سے نفس کہتا ہے تم بہت باذوق ہو. کیا ہے نفس کیا کہتا ہے؟ قیمت لگاتا ہے تمہیں، کلر کمبینیشن کا بڑا سلیقہ ہے. اور یہ اس وقت یہ بنیاد ڈال رہا ہے کہ تم اسے دیکھنا مت چھوڑو، تاکہ کل دو چار کھڑکیوں پر نامحرم پہ نگاہ پڑے، ایک مضمون کلر اور بلڈنگ کے ایلیویشن کا بناؤ دل کے اندر، پھر کل کسی حسینہ پہ نگاہ پڑے اس کا مضمون تیار کرو، اور جب تمہارے پاس مضمون کی کمی ہوگی تو میں تم کو سب پیش کرتا رہوں گا. یہ نفس تیار کر رہا ہے اور اسی کے شکار ہے ہم سب شکار. ایک سیکنڈ کے لیے نفس دل فارغ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے. کا غلام لے لو، عیب بہت، عیب ایک ہی ہے. کا کیا ہے؟ کا بس یہاں کی وہاں لگاتا ہے. تو کہا یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے حرج کی بات نہیں کہ لگاتے ہم بھی آپ بھی، ضرورت اس میں کیا عیب ہے؟ جو عیب معاشرے میں سب کے اندر اتر جاتا ہے الا ماشاء اللہ کوئی بچا ہو، تو عیب عیب نہیں رہتا، وہ عیب عیب نہیں رہتا. اور میں ایک بات درمیان میں پھر سنا دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ پھر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جب غلطی بہت رواج پا جاتی ہے تو صحیح کو غلط سمجھا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غلطی جب رواج پا جاتی ہے بہت معاشرے میں تو صحیح کو، یہ سارے لوٹ گئے، نفس نے لوٹ لیا. کس نے لوٹا؟ یہ کام کون کر رہا ہے؟ نفس شیطانی تو کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے. دیکھو میرے ہاتھ میں ایک رسالہ ہے جس کے اوپر خوب غصہ ہو رہی پبلک مجھ پر، بہت غصہ، خوب گالیاں ہے، غصہ ہے، برائی ہے، تراوی کا عنوان بنا کر اور طرح کے بہتان ہیں، اور مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے، مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھ سے کچھ ہوتا نہیں، بیمار آدمی ہوں، پڑا رہتا ہوں بستر پر، نیکیاں کمانے کا ڈھنگ بھول گیا. سوتے سوتے ایک ہی بات یاد ہے کہ دکھتا ہے، ہائے دکھتا ہے، ہائے دکھتا ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میرے بندے، بھیج دوں گا بہت ساری، بھیجوا دوں گا لوگوں کی، تو بہت سارے بھیج رہے. بہت مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پتا چلا صبح میں فجر کے بعد بھی کچھ لوگ دیندار جمع ہوتے ہیں چائے پینے کے بہانے، اور مجھے میری خوب برائی کرتے ہیں. تو جس کے سامنے کیا وہ بیچارہ تو بڑا مسکے میں آیا، فون آن ہوا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے. ارے میں نے کہا بالکل منع مت کرنا بھائی، ابھی یہ رمضان میں تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ چائے پینے بیٹھیں گے نہیں تو نیکیاں بھیجیں گے نہیں، کوئی اور وقت مقرر کر لیتے ہماری برائی کا تو اور اچھا تھا. अब तो रमजान में तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए चाय पियेंगे नहीं तो बुराई करेंगे नहीं, और चाय पी के बुराई करते बैठ के तो हमारा फायदा हो रहा था। खैर कहीं तो करेंगे ही, जब आदतें बद लगी है तो कहीं तो करेंगे, बैठ के जहां बैठ जाए कुछ ज्यादा देंगे। इसलिए कि मेरी आदत यही सब करने की है, खत्म तरावी पर उजरत का शरई हुक्म, और सब सुनाऊंगा नहीं, खाली जुमला सुनाता हूं वो इस बात पर कि जब गलत बहुत लोग मिलकर करने लगते हैं तो सही गलत हो जाता है और गलत सही हो जाता है। ये हजरत मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब आजमी दामत बरकातों उस्ताद हदीस व फिका दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद को मानते हैं? अरे आप लोग मानते हैं? हाँ उनको, उसको तो मानते ही हैं, हमारे अकाबिर ने कायम किया है। अब उनकी अगर हमारे रिवाज में चलेगी तो मान लेंगे, रिवाज में नहीं चलेगी तो नहीं मानेंगे, इसमें क्या हर्ज की बात। लिख रहे हैं, आजकल माहौल और माशरे में जो गैर शरई चीजें बड़ी तेजी के साथ रिवाज पा रही हैं, उनमें तरावी में कुरान करीम सुनाने की उजरत लेने और देने का मसला भी है। गैर शरई और गलत चीजों का वो उमूम, इस जुमले को सुनिए, यही सुनाना चाह रहा। गैर शरई चीजों का, गैर शरई और गलत चीजों का वो उमूम जिसमें अहले इल्म और दीनदार तबका मुब्तला हो वो बड़ा खतरनाक होता है। बदकिस्मती से तरावी की उजरत लेने में ज्यादातर यही तबका मुब्तला है। हालांकि अहले इल्म का इजमाई फतवा है कि तरावी में कुरान करीम सुनाने की उजरत लेनी और देनी दोनों हराम और नाजायज है, चाहे शर्त लगाकर ली जाए या बगैर शर्त लगाए ली जाए। तो आप शोर मचाए कि ये बड़ा बेपढ़ा लिखा नए नए फतवे लाता है, मैं नया फतवा ला रहा हूं है? ये इजमाई फतवा लिखा हुआ है, इजमा है तो ये इजमा का मतलब भी कुछ समझते हैं? इजमा का मतलब है? इजमा का मतलब समझते हैं क्या है? तो बगैर समझे ही फिर हमें क्यों आप काट रहे हैं इसमें, हमारा भी इसी ही के साथ इजमा है। हाँ तो शोर मचाए सब तरफ, गालियां आ रही हैं और अपने मसलक के लोग हमें खूब दे रहे हैं। हमने कहा वाह भाई वाह, नसीब तो मेरा खुल गया है, नसीब जाग गया। बगैर किए कम हर जगह से कमीशन आए, जितना प्लाट पनवेल एरिया में बिक रहा हो सबका कमीशन बैठकर हमारे पास आए, तो इससे बड़ा नसीब और क्या चाहिए है? अब जितनी मस्जिदों में तरावी सुनाई जाएगी हर जगह मुझे गालियां दी जाएगी, दूसरा पार्क के लिए हाफिज नहीं मिल रहा है, और कहते हैं हम मांगते थोड़े ही हैं, हमको इंतजार थोड़ा ही रहता है, ना दो तो ये खुलती है, बाकी कितना इंतजार है। दूसरा पार्क के लिए हाफिज नहीं है, मैंने कहा मियां कोई मत भेजो, अल्हम्दुलिल्लाह इतने उफाज है कि रोज एक कुरान खत्म करवा दूंगा अल्लाह ने चाहा तो, इतने हैं पढ़ने वाले, खड़े रहो पीछे खड़े रहो, देखो पढ़ते नहीं पढ़ते दावा नहीं, आ जाओ मेरे पास। मस्जिद वाले तो इजाजत नहीं देंगे, इसलिए कि वहां तो भाई आवाम है, उनका काम है, आओ मेरे पास इस बिल्डिंग में, मैं तुमको रात भर सुनवाना दूं तो कहो है, इतनी हिम्मत तो आओ ना, इतने हाफिज रोज हैं माशाल्लाह सुनाने वाले, पांच जगह तरावी तो मेरे घर में होगी इंशाल्लाह, पांच दफा पांच कुरान खत्म होगा तरावी में इंशाल्लाह, ये तय हुआ है। कितना? चार माले की बिल्डिंग है और ग्राउंड फ्लोर है, ये तय हुआ है कि पांच कुरान इसमें खत्म करना है इंशाल्लाह, हर जगह एक कुरान। नहीं मिलता क्या? और नहीं मिलता तो शरीयत के हम थोड़े इससे ठेकेदार हैं कि कोई ना मिले तो गलत करे, बोले शादी की जरूरत है, निकाह नहीं हो रहा तो जिना करेंगे, नहीं मिलती तो क्या करें, जिना नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे। जायज हो जाएगा क्या? अल्लाह ने तो शरीयत के जानने वालों ने इसकी तरतीब बयान कर दिया है, जब कहीं किसी इलाके में कोई हाफिज बगैर पैसे की सुनाने वाला न मिले तो अलग तरह कैसे तरावी पढ़ लो, नहीं हमारी शान घट जाएगी। हमने अलम तरह कैफ से पढ़ा, हमारी शान घट जाएगी, ایک پتہ چلا بمبئی گئے تھے, بڑے دیندار آدمی ہیں, بڑے دیندار مانے جاتے, وہ کہہ رہے ہائے افسوس, ہائے افسوس, ڈاکٹر لوگوں نے منع کر دیا, روزہ مت رکھو, میں تو رکھوں گا. ہم نے کہا یہ دینداری ان کی, یہ ان کی دینداری, یعنی اب تک دین پر اپنی مرضی سے چل رہے تھے, نفس کے شکار. حاجی صاحب بیٹھے تھے وہاں حرم میں اور کچھ لوگ بیٹھے تھے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. ایک آدمی آئے کئی دنوں کے بعد اور بڑا دکھڑا رونے لگے, کہنے لگے حضرت بہت بیمار ہو گیا اور کیا کرے, پانچوں وقت حرم میں آیا کرتا تھا, میری تو جماعت حرم کی چھوٹ گئی, بڑا افسوس ہمیں ہو رہا ہے, بہت افسوس ہے, کیا کریں, اتنی بڑی نیکیاں میری سب ختم ہو گئیں, بہت افسوس ہے, اس طرح کی جبلیاں ابلیاں مجھے کہے ہوں گے, میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں. چلے گئے, حضرت نے فرمایا عارف نہیں ہے, اللہ کو نہیں پہچانتے. پہچانتے تو تھوڑا ہی ہے, کہتے بیمار کس نے کیا, اللہ نے, اللہ ہمارا دوست ہے دشمن ہے, ہمدرد ہے خیرخواہ ہے یا بدخواہی چاہتا ہے, میرا نفع اسی میں کہ پڑے رہو گھر پر, مت جاؤ حرم, نہیں جائیں گے, آ جاؤ حرم, ٹھیک ہے چلے آئیں گے, اچھا رکھا ہے رکھ لو روزہ, رکھ لیں گے, مت رکھو روزہ, نہیں رکھیں گے. یہ افسوس ہوا, ویلا مچ رہا ہے. میں نے کہا ہائے ہائے, میں بھی سمجھتا تھا بڑے دیندار آدمی ہے, لیکن دیکھو نفس کے شکار کیسے ہو گئے. کیا دینداروں کو نفس چھوڑ کر جاتا ہے کیا؟ انہیں پر تو زیادہ حملہ ہے, انہیں پر زیادہ حملہ ہے. جو بے دین ہے وہ تو اس کے شکار ہو چکے, جو بے دین ہے وہ تو شکار ہو چکے, اب ان پر پھر سے وار کرنا ہے. وہ تو بے دینوں کو نہیں, دینداروں کو تلاش کرنا ہے. اس کی دینداری کہاں تک, اس کی دینداری کہاں تک, اس کو دھوکہ کیسے دے, اس کو دھوکہ کیسے دے. خیر وہ خرید لے گئے, خرید لے گئے غلام. اس لیے سب کے گھر میں یہی چل رہا ہے, رات گھر پہنچے بیوی کا منہ اترا, گھر پہنچے تو بیوی کا منہ اترا, کیا ہو گیا, بس اب وہی سیکھو, اما نے ایسے کہی, اما یعنی ساس اما, تمہارے بھائی نے ایسا کہہ دیا, تمہاری بہن نے ایسا کہہ دیا, اب یہ آئے, یہ تو ماشاء اللہ, یہ تو بڑے عاشق ہیں, وہی آتی ان کی بیوی پر, کوئی تحقیق نہیں کچھ نہیں, بس سیدھے. ارے یار روز کی کھٹکٹ ہے, کچھ اپنے کو سوچنا ہی پڑے گا, یہی تو بول رہے ہیں اتنے دن سے تم کو, مگر تم کو تو سمجھ میں نہیں آتا, خالی اماں ہی سمجھ میں آتی ہیں, بس اب سمجھا دیا, یہ بہت سمجھے ہوئے آئے گھر پر. تو یہ دن بھر چابی دے کے رکھتا ہے, دن بھر ان عورتوں کو دن بھر چابی دے کر. مردوں کا دھوکا تو بیان ہوگا, کچھ عورتوں کا بھی تو ہو جائے, اور مرد جو عورت کے دھوکے کا شکار ہو رہا ہے, دیکھیے ایک کیا, دوسری کیا, تیسری کیا, اب چوتھی کرنے جا رہے ہیں. ابھی بھی نگاہ یہاں وہاں ہے کہ کوئی مل جاتی تو اچھا تھا, یہ نہیں دیکھا کہ اس سب سے کتنا بڑا کیا کیا نقصان ہوا, دل کتنا اجڑا, خدا کی یاد کی فرصت نہیں ملی, اسی میں الجھے رہے, وہ اس کی کہتی رہی برائی, وہ اس کی کرتی رہی برائی, سب لٹانے کے بعد بھی ہوش نہیں آیا. ابھی میرے مرید ہیں, آپ لوگ نہیں جانیں گے, ابھی نام نہیں لوں گا ان کا, بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت کر کے آتا ہوں, آپ یہاں بولتے آپ کو بڑا کشٹ ہوتا ہے. میں نے کہا مجھ کو کشٹ نہیں ہوتا, کشٹ تو گدھے کو بھی ہو جاتا ہے, کشٹ تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے, کشٹ کیا چیز, کشٹ تو اس کو بھی ہوتا ہے. ابھی سورت گئے تھے چندے کے لیے, ہمارے داماد ایک گھر میں لے کے گئے, دو سیٹ ہیں, بڑے بڑے سیٹ کہے جاتے ہیں, ہاتھ پر ہماری جتنے ہیں لیکن بہت بڑے بڑے کہے جاتے ہیں وہاں پر, بہت بڑے ہیں. تو میں نے کہا چلو ملاقات ہم بھی کر لیں گے. گئے تو اب یہاں سیٹ ویٹ کیا ہے, یہاں تو چند آباد کی بات ہے, پہلے ایک تقریر ہو گئی, میں نے کہا مال بیچ دو بعد میں خریدیں گے, چند آباد میں جانا, پہلے میرا مال تو لو تم. اور بیٹھتے ہی گھریلو جھگڑے, باہر کے با اخلاق, گھر کے بد اخلاق, اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں گھر میں سب سے با اخلاق میں ہی ہوں. اب جب سنایا 20-22-25 منٹ کی تقریر ہو گئی, تو اور ایک دو رسمی باتیں بھی ہو گئی, پھر تو اٹھ کے ہم چلے آئے, تو احمد علی کہنے لگے ہمارے داماد بابا ہم تو قائل تھے آپ کے کشف کے مگر آج تو بالکل یقین ہی ہو گیا. میں نے کہا اچھا کیا ہو گیا بھائی, اچھا کرامت ثابت ہوئی حضرت بابا سے؟ کہنے لگے دونوں کے گھر میں اس قدر جھگڑا ہے کہ چین سے رہتے نہیں دونوں. سمجھا ہوگا کہ ہم نے کہا اور ہم نے تو آپ سے کچھ کہا بھی نہیں. ہم نے کہا تم نے کہا انہوں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ حجت قائم کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے, تیری ضرورت کی بات میں نے کہلا دیا. یہی ہدایت کی گھڑی 24 گھنٹے کھلی ہے جو آپ سے کہہ رہا تھا نا, بند نہیں رہتی یہ گھڑی, اللہ کھولے رہتے کسی کی زبان سے, کسی کے اشارے سے, کسی کنائے سے, کسی کی کہیں ٹھوکر لگنے سے, کہیں نہ کہیں یہ ہدایت کی راہ اللہ دکھاتے جاتے. یہ ہدایت کی راہ ہے, اب تک غلط چل رہا تھا پلٹ جا توبہ کر, لیکن اٹھ کے جائیں گے تو پھر وہی ارے دو ماشاء اللہ آج کا بیان. ارے آج کا بیان یہ کیا آج کا بیان, ہمارے لیے ہم نے کتنا لیا, یہ بھی دھوکا نفس کا کیا دھوکا, آج کا بیان اور دو چار باتیں کہہ کے مطمئن. لیا کتنا نہیں, لینا تو ہے ہی نہیں, لینا ہے. لے کے گیا غلام گھر, اتنا خطرناک ہے وہ آدمی جو دوسروں کی تم تک پہنچا دے یقین رکھو تمہاری دوسروں تک پہنچائے گا. اس کا کوئی شک شبہ نہیں, اس کا پیٹ پیٹ کھلتا ہے, یہ جائے گا کہے گا ضرور, اور تم کو ہلاکت کے دروازے پہ کھڑا کرے گا, اور نہیں تو 10 آدمی کے نئے مضامین جو میسج کی شکل میں دل پر آئیں گے جو اللہ کی یاد میں لگنے نہیں دیں گے, اتنے مضمون تو دے کر جائے گا ہی. یہ دوستی کے لائق نہیں, پاس بیٹھانے کے لائق نہیں. دشمنی کسی سے مت کرو. السلام علیکم, جہاں پتا چل جائے ایسا نقصان ہوتا ہے وہ السلام علیکم. اس نے ایک دن غلام نے بیوی سے کہہ دیا اس کی کہ تمہارے شوہر کا تو تعلق کسی غیر سے ہو گیا ہے, اب کسی عورت کو یہ پتا چل جائے کہ میرے شوہر کا تعلق کسی اور سے ہے تو پھر کیا کرے گی, وہ تو بہت بے چین ہوگی, ہونا بھی چاہیے, فطری چیز ہے. اور اس سے جب دیکھا اس نے کہ یہ پریشان ہو گیا تو اس نے کہا کہ ہو گئی تو کہا پریشان مت ہو, میں ایک فن جانتا ہوں, تم کو ایک راستہ بتا دوں گا اور تمہارا غلام ہو کے جیے گا وہ. بس بیوی لوگوں کو تو یہی چاہیے کہ شوہر میرا غلام ہو جائے, ہر بیوی کی چاہت یہی کہ شوہر میرا غلام. ارے تم نہ چاہتی ہو تو ناراض مت ہونا, سنو تو صحیح, غصے میں آگے مضمون ترک مت کر دینا, سنو. میری بیوی بھی سن رہی ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم کو ہم بعد میں سمجھا لیں گے, تم ہمارا مضمون سنو. اچھا اس میں کیا ہے, اگر وہ چاہتی ہیں ہمارا ہے اور ہمارا ہی ہو کر رہے تو اس میں کیا بری بات. تو ہم تو آپ کو سکھاتے ہیں باتوں سے آپ ان کے ہو جائیے, عمل سے وہ دیکھیے جو شریعت کہتی ہو کریے. ہم تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ باتوں سے ان کے ہو جائیے اور دیکھیے عمل جو شریعت کیا وہ کیجیے, عمل سے ان کے مت ہوئیے, باتوں سے ان کے, کیونکہ ان کو فہم نہیں ہے, یہ تو جذباتی ہیں, پھر تھوڑی دیر میں جذبات میں آئیں گی, کچھ کا کچھ کریں گی. اور عورتیں اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کا گھر سنور جائے تو یہ تنہائی کی شکایت ایک دم چھوڑ دیں. اپنے گھر میں شوہر کے آنے کے بعد کسی دن گھر کا کوئی تذکرہ نہ کرے. تذکرے میں کبھی کوئی بات صحیح ہوتی ہے, جذبات میں کچھ بات غلط ہوتی, کچھ حقیقت ہوتی ہے, کچھ غیبت ہوتی ہے, کچھ بہتان ہوتا ہے. بس اس کے بعد میں کچھ کہنے جا رہا, کچھ حقیقت ہوتی ہے, کچھ غیبت ہوتی ہے, کچھ بہتان ہوتی ہے. اور غیبت زنا سے زیادہ بری چیز ہے, بہتان اس سے زیادہ بری چیز ہے. جس کے کمرے میں اتنی دفعہ زنا ہو اس کے گھر میں جوڑ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہر گناہ توڑ کا سبب بنتا ہے, دلوں کا توڑ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہر گناہ توڑ کا سبب بنتا ہے, دل میں پھٹن پیدا کرتا ہے. جب اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر اتنی دفعہ اتنا برا حرام کام ہو, زنا کے اڈے پہ چلے جائیے, اللہ بچائے, گزر کے دیکھ لیجئے کتنی نحوست ہے کہ ایمان والا گھٹن محسوس کرتا ہے. किसी वजह से उस रोड से गुजरना हो जाता है तो इतनी घुटन महसूस होती है कि जल्दी से सवारी निकल जाती है तो अच्छा था। तो जिसके घर में ही जिना हो रहा है, उसके बिस्तर पर जिना हो रहा है बैठकर, और जिना से बुरी चीज हो रही है, जिना ही नहीं जिना से बुरी चीज हो रही है, बल्कि किसी की आबरू रेजी माँ के साथ 36 दफा जिना करे, इतना बुरा हो रहा है उसके उसके घर में जो क्यों होगा, सोचो तो सही। नफ्स के ऐसे शिकार, शैतान के ऐसे शिकार, बाहर की दुनिया में बड़े दीनदार। और औरतें, कितनी औरतों को जानता हूं, असर से लेके मगरिब तक, कभी मगरिब से लेके इशा तक मसल्ले पर बैठी रहती हैं, और अब तो रमजान आया है, अब तो इतिकाफ भी करेंगी, लेकिन वो बुराइयां ये नहीं छोड़ने को तैयार, ये तो हम बाकी रखेंगे। क्यों? नफ्स शैतान के शिकार हो चुके, इसलिए बाकी रखेंगे। ताज्जुब उस शख्स पर जो गफलत गाफिल है और एहसास होने के बाद भी उसकी गफलत बाकी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज्जुब की बात है, हदीस का मफहूम है कि गाफिल है और गफलत का एहसास होने के बाद भी गाफिल है, जिंदगी नहीं बदलता। गफलत खत्म होने का मतलब जिंदगी बदलती है। हजार बार सुन ले कोई, अगर जिंदा होगा तो असर करेगा और मुर्दा होगा तो असर नहीं करेगा। हजार बार ऐसी बात कही जाए असर नहीं होता, दिल मुर्दा हो चुका है, रूह मुर्दा हो गई और इसी नफ शैतान का शिकार हो चुकी है। और औरतें भी घरों में बैठकर बयान सुनती हैं, पता चला शिकवा शिकायत घर से निकालो, बातों बातों पे नाराज हो जाना, बातों बंद कर देना, तुम्हारे शौहर के साथ जियो शरीयत वाली जिंदगी में, जितनी नाराज होना तुम्हारा अल्लाह ने शरीयत में मुकद्दर कर रखा है, इतनी रूठ जाओ तो उतनी रूठ भी जाया करो, वो मालूम करो किसी आलिम से, अपने ही शौहर से पूछो कि जाके मालूम करो मैं कितना रूठ हूं तो पसंद है अल्लाह को, ये पूछो, सवाल करो। फिर दूसरी बुरी आदत कि घर में रात को जब शौहर के आने का वक्त होता है, शौहर के आने का वक्त होता है तो एक पहरा सास की तरफ से हो जाता है कि दरवाजा जिसकी बीवी है वो ना खोले। उसका शौहर आया, उसकी बीवी दरवाजा नहीं खोल सकती, और बाजी तो इतनी चाहती नहीं कि ऐसे काम में लगाती हैं कि उठ के जा ना सके तो, और इतनी बड़ी नादान है कि कहती है कि मेरी मोहब्बत को बांट दिया है मेरे बेटे ने, बीवी आने के बाद मोहब्बत को बांट दिया। जरा गौर से मुझे बताइए आप कि माँ, बीवी, बेटी, बहन, औरत की शक्लें कितनी है, माँ, बीवी, बहन और बेटी, ये चारों की मोहब्बत अलग किस्म की अल्लाह ने बनाया या नहीं बनाया है, बोलो तो सही। तो जब माँ की मोहब्बत अलग है तो उसमें से बीवी को कहां से देगा, वो तो बीवी की मोहब्बत का खजाना अलग अल्लाह ने दिया, बेटी की मोहब्बत का खजाना अलग दिया, बहन की मोहब्बत का खजाना अलग दिया। तो ये जब चार किस्म की मोहब्बत बना दिया तो ये चारों अलग अलग है तो इसकी उसको कैसे बांटेगा, बीवी वाली मोहब्बत की निगाह से माँ को नहीं देखेगा, माँ वाली मोहब्बत की निगाह से बेटी को नहीं देखेगा। हमारे यहां हमारे रिश्तेदार को बड़ा जोश हुआ अदब का, बड़ा जोश हुआ अदब का, मैं उनसे छोटा हूं रिश्ते में तो मुझको तो भाई कहने लगे, शकील भाई, बड़े प्यार से बोलते है, हालांकि छुरी बगल में दबा के इतनी तेज रखी कि पांव तो जबा कर दू, लेकिन अदब है आज का भाई। तो बता देना हमारे छोटे छोटे भाई जो इतने छोटे हैं उनको भी कहने लगे भाई, तो मैं सोचा एक दिन जाके पूछूं क्या बीवी को अम्मा बोलने लगे हो क्या, इतना अदब आ गया तो बीवी को अम्मा बोल रहे हो क्या आजकल। तो माँ बिना वजह नाराज हो रही, मेरी मोहब्बत को बांट दिया। आप बताइए माँ की मोहब्बत जिस निगाह से माँ को देखता था अब बीवी को देखेगा वैसे, और जो बीवी को देख रहा है वो माँ को देखेगा क्या, और जो बेटी को देखेगा वो मोहब्बत अलग होगी कि माँ बीवी और बेटी की मोहब्बत एक होगी कि इसी की बदन से निकली लिहाजा वैसे देखो देखेगा क्या, देख ही नहीं सकता, वो तो बाप है। बेटी की मोहब्बत का जज्बा अलग बना है, लेकिन ये सास जब सास बन जाती है तो बस
میرے بیٹے نے محبت بانٹ دیا. بابا کوئی تعویذ ہے کیا؟ ہم نے کہا تعویذ تو ہے, تعویذ ہے. ساس کے پاس گم ہو گئی. کہاں گم ہو گئی ہے؟ تمہاری ساس کے پاس گم ہو گئی کہ جب تم جوان آئی تھی نا تو چاہتی تھی اما سے بات نہ کرے, میری محبت بانٹے مت. اس نادانی میں تم تھی, اب تمہاری تعویذ گم ہو گئی, وہیں جا کے تلاش کرو, قبر میں اس کے سینے سے نکالو. کہاں ہے؟ تو یہ ایک جھگڑا ختم. گھنٹی بجی, فلا کی بیوی آئی, اس سے بولو جا بیٹا تو دروازہ کھول, اور یہ سارا کام کاج ایسے وقت نمٹا کر اپنے کو بنائے اور سنوارے, اپنے کو بنائے اور سنوارے سارا کام نمٹا کر. میرا شوہر 8 بجے آتا ہے, 8 بجے تک کچن کے سارے کام کر کے فارغ ہو جاؤں گی. اب صرف کھانا نکالنے کا میرا کام ہوگا. اب میں غسل کر لوں, اچھے کپڑے پہن لوں, میک اپ کر لوں, بن لوں, وہ میک اپ جو جائز ہے. اب یہ باہر کی حسیناؤں کو گھور کر آیا تھا, گھر میں آیا تو منہ لٹکا ہوا اور پسینے کی بدبو بغل سے آ رہی ہے, کپڑا ایک دم گندا ہو گیا ہے, اور یہ دکھانا چاہتی میں تمہاری یاد میں مر رہی تھی اور تمہارے کام میں مر رہی تھی. نفس کا دھوکہ. اس وقت تمہارے لیے حکم ہے بن سنور کے رہو, اور میاں مٹھو جو تم آیا ہو منہ لٹکائے ہوئے, اب لٹکا ہوا منہ اپنے کاروبار اپنی آفس میں چھوڑ دو, ٹینشن ہوئی. اب تم بیوی کے سامنے آئے ہو, بیوی کو دیکھ کر مسکراؤ, کتاب اٹھا کے دیکھو, کتاب میں لکھی بات میں اپنے گھر کی نہیں کہتا, اللہ بھلی بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. شرم کی بات ہے تو کیا ہوا, ہونے تو شرم کی بات. جو شوہر اپنے گھر میں جاتا ہے, حدیث کا خلاصہ ہے, جو شوہر اپنے گھر میں جاتا ہے اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے, اس کی بیوی دیکھ کر اسے مسکراتی ہے, تو اللہ بھی مسکراتا ہے, اللہ بھی مسکراتا ہے. جمعہ کے دن ہمارے ایک پڑوسی مفتی صاحب ہے, جوان آدمی ہے, بیٹھ گئے, تھوڑی سی باتیں, کچھ مسئلہ پوچھنا شروع کیا اور کئی مسئلے پوچھ ڈالے. وہ اندر سے بےچارے بے چین ہو رہے تھے کہ وہاں بیوی کھانا لگا کے بیٹھی ہے, دیکھو جلدی آنا, دیر مت کرنا. تو میں سمجھ گیا کہ اندر تو بڑی بے چینی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا مفتی صاحب, کچھ غصے کا آثار امید نظر آ رہی ہے, گھر پہنچتے ہی کچھ غصہ ہو جائے گی, اور ہونا چاہیے. آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں, آئندہ منع کریں گے, بابا کے پاس رکو مت, پیچھے بیٹھا کرو, جمعہ کے دن مسافہ مت کیا کرو, فوراً نکل آیا کرو. تو مسکرائے, وہ بھی جانتے ہوں گھر میں جو ہوتا ہوگا, جھوٹ بولیں گے نہیں, سچ بتائیں گے نہیں. ہمارے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں, ان کا جملہ میں بہت جگہ نقل کرتا ہوں, ہاں, کہ دھندا سچ بول کر کریں گے, جھوٹ بولیں گے نہیں. بیپاری دلال مال لاتا ہے, 25 روپے میٹر ہے, یہ کہتے نہیں میں تو اس سے کم میں لیتا ہوں. دلال پوچھتا ہے کتنے کا لیتے ہو, انہوں نے کہا جھوٹ بولیں گے نہیں, سچ بتائیں گے نہیں, تو بتا کتنے میں دے گا. تو مفتی صاحب مسکرائے تو میں سمجھ گیا کہ جھوٹ بولیں گے نہیں, سچ بتائیں گے نہیں. تو میں نے کہا سنو سنو, جیسے گھر میں داخل ہو تم ان کو کہو, سنو سب بات سے پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں, ان کو رہنے تو غصے میں, تم کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو اور بیوی کو مسکرا کر دیکھے اور بیوی بھی اس کو مسکرا کر دیکھے تو اللہ مسکراتا ہے. اب کیا خیال ہے؟ تو مسکرا نہیں دیں گی, تو رات کو ملے تو غصے میں نہیں تھے, کہیں لگے نہیں سب ٹھیک ہے. ہم نے کہا سب ٹھیک ہے, ٹھیک تو رہے گا ہی, جب ہم ٹھیک رہیں گے شریعت کے مطابق تو سب ٹھیک رہے گا, اور جب ہم شریعت کو چھوڑیں گے تو سب خراب رہے گا. دن بھر یہی شکوا ہے, یہ خراب ہے, وہ خراب ہے, یہ بگڑا ہے, وہ بگڑا ہے, یہ تکلیف ہے, وہ تکلیف ہے, سوائے اس سے کوئی تذکرہ نہیں. پھر کیا ہوا, ان کا فون آئے گا, ادھر دیکھو ان کے فون پہ سب متوجہ کیوں ہو, کوئی ارجنٹ فون ہوگا, ورنہ سب کو منع کر دیتے ہیں کہ ہم کو 11 سے لے کے 1 بجے تک فون مت کیا کرو. وہ کوئی ارجنٹ ہوا, وہ کچھ کام, ادھر متوجہ رہو. تو اس بیوی سے کہا کہ میں تم کو تدبیر بتا دوں گا, اس لیے تم ناراض, تم پریشان مت ہو, تمہارا شوہر کہیں متوجہ ہوا ہے تو تم بالکل پریشان مت ہو, ہم تم کو ایسا تعویذ دے دیں گے کہ ہمیشہ کے لیے تمہارا غلام ہو جائے گا. تو اور ادھر شوہر سے کہہ دیا, اور شرط کیا ہے, تم اس کے یہاں کا ذرا سا بال دے دو مجھے, کہاں کا, یہاں کا بال نکال کے دے دو, اور میں ایسا تعویذ بنا دوں گا کہ زندگی بھر تمہارا غلام رہے گا. کہا اچھا, یہ تو بہت آسان بات ہے, اس لیے تو ساتھ میں تو رہتے ہی. ادھر شوہر سے کہا کہ دیکھو, تمہاری بیوی کا تعلق کسی غیر سے ہو گیا اور تمہارا وجود اسے پسند نہیں,
इसलिए तुम सो जाओगे तो मुमकिन है कि अस्तूरा लेके तुम्हारी गर्दन काट दे। इसलिए आजकल गफलत की नींद मत सोना, आजकल गफलत की नींद मत सोना। अब तो शोहर बहुत होशियारी के साथ, अब जैसे वो बनावटी नींद सोया था, अल्लाह ने उसने किया, उसने हाथ से पकड़ा अस्तूरा, बीवी को जबा कर दिया। तो समझ गया, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये है ऐसे दोस्त जो यहां वहां की बातें नकल करते हैं। पना मांगो, दूर भागो, दूर से कहो अस्सलाम वालेकुम, हमारे पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने का। खुद भी शिकार हुए हैं, तुमको भी शिकार करेंगे, तुम्हारा भी नुकसान करेंगे। इसलिए ये माशरे में जो हम बातें सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ये सब एक मजमून तैयार करके नफ इतना हमारे इसमें डाल चुका है, यानी एडवांस में है ना। देखो आजकल कंप्यूटर का जमाना है, एडवांस में सब डाला गया है, एडवांस में। मेरे पास तो ये है, क्या नाम है इसका, कौन सा फोन है हमारा भाई, एयरटेल, हवा की दुम। एयरटेल का मतलब, हाँ मेरे पास तो हवा की दुम है, इसी में सारी दुनिया गुम है। लेकिन एक फोन घर में है रिलायंस का, तो कल अब्दुल्ला को लेकर बैठा, मैंने कहा भाई बैठ जरा सामने, जरा देख सब, थोड़ा क्या चंदा आया, क्या आया, क्या घटा, क्या बचा, यानी चंदा करके हमको क्या बचेगा, समझ गए ना। मैंने कहा बेटे से जरा हिसाब लगा, तो उसमें बार बार बेल होती थी, एक बीप होती थी। तुम लोग भाई जिसका फोन उठा लो ना, ये क्या मुसीबत है, ये ले जाओ उधर बात करो। तो भला बाबा फोन नहीं आ रहा है, मतलब क्या, बोले मैसेज है, नाक में दम कर दिया है लोगों ने मैसेज। हरदम हिदायत की राह खुली है, हरदम हिदायत की राह खुली है, कि यहां भी एक हिदायत की राह खुली है, कि देखो जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है वो मैसेज आता है तो तुम बहुत परेशान होते हो और बेजारी जाहिर करते हो, और नफ्स शैतान जितने मैसेज भेजते हैं सब रिसीव करते हो, तो नफ्स से शिकार होगा नहीं हो। अरे कुछ बात कहा मैंने अल्लाह की दी तौफीक से, हिदायत की राह तो हर वक्त खुली है। अगर नफ्स शैतान हर वक्त मुतवज्जे है धोखा देने के लिए, तो अल्लाह की कसम अल्लाह की रहमत भी हर वक्त मुतवज्जे है हिदायत देने के लिए, लेकिन हम जिसकी सुने। इसलिए कल क़यामत में शैतान खड़ा होगा तो ये बात कहेगा, जब उस पर इल्जाम लगाएंगे लोग, इसने हमें ऐसा ऐसा कहा, तो शैतान कहेगा मुझे इल्जाम मत दो, मैंने तुम्हें तरगीब दिया था, तो तुम्हें तो भली काम की भी तरगीब देने वाले मौजूद थे, तुम मेरी बात क्यों मानते थे। इसलिए जब शैतान के धोखे, ये चौथा बयान है। कल मुझे बहुत खुशी हुई, एक नौजवान आलिम अल्लाह उनको बहुत अच्छा रखे, उनकी बातों से मुलाकात से मेरा जी खुश हो गया, बल्कि रोया रोया खुश हो गया। उनके लिए बड़ी दुआएं निकली और बहुत दुआ इंशाल्लाह करूंगा भी, अल्लाह उनको हर फितने से बचाए, आफियत के साथ रखे। तीन बयान नफ्स का 1300 आदमी को सुना चुका वो आदमी, कितने आदमी को, तीन बयान नफ्स का जो हुआ कल बात भी पता, 1300 आदमी तक मैं पहुंचा चुका हूं। मेरे पास फोन आया कि नफ्स का बयान सुना, बड़ा फायदा हुआ, ये मजमून तो कभी सुना नहीं था और बहुत फायदा हुआ। तो मैंने उनको रात को फोन लगाया, हमने कभी फोन ऐसे आए थे और जबान से तो आपके इलाके के लग रहे थे, तो कहने लगे मैं 1300 आदमी को सुना चुका तुम्हारा बयान, कितने आदमी को, हमें फुर्सत ही नहीं कारोबार से, कारोबार से तो बहुत फुर्सत है दोस्तों, दोस्तों से फुर्सत नहीं है, बात करने से फुर्सत नहीं है, बात करने से फुर्सत। एक आदमी में हर तरह का मर्ज नहीं होता, किसी को ज्यादा बोलने का मर्ज है, किसी को आंखों की खता का मर्ज है, किसी के अंदर कीना पल रहा है, किसी के अंदर हसद हो रही है, ये सब अमराज एक आदमी में जमा नहीं होते, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह के अमराज लगे होते हैं, और ये सब दो चार से ज्यादा नहीं होते, बल्कि अक्सर एक दो ही होते हैं, अक्सर एक दो ही होते हैं। मेरे पास एक आली माते बड़े काम के हैं बहुत, मेरा प्यार उन पर उमड़ उमड़ कर आता है मगर खुदरा ही नहीं जाती, यही निकल जाए तो हो जाए, ये वासिल हो जाए लेकिन नहीं जाती। इसलिए नफ शैतान के धोखे में आकर जहां जहां मुब्तला है, तीन जगह ऐसी है, कान आंख जबान, ये जाहिर के आज़ा इस्तेमाल होते हैं, इससे दिल के अंदर की तमाम बुराइयां या तो भली बातों को सुनकर पक्का इरादा और पक्की तौबा के बाद रुख बदल दिया तो दिल बदल जाता है, वरना सुनकर गलत बातों से मुतासिर होकर उसी राह पे चलते रहे तो फिर नफ शैतान इतना लूटेगा कि कल कयामत में जब सबसे ज्यादा जरूरत का दिन होगा और खड़ा होगा तो पता चलेगा हाय हाय नफ्स ने तो सब लूट लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बयान के बाद ज्यादा बोलते हो तो कम कर देंगे और सोच कर बोलेंगे कि इसके बोलने से मेरा अल्लाह पाक खुश होगा कि नाराज होगा। अल्लाह ताला मौलाना इलियास साहब, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से भर दे, पता नहीं क्या दर्द था उम्मत का, क्या गम था, ये तो वही जाने और अल्लाह ही जाने कि ऐसे वसूल बनाए, ऐसे उसूल कहते ना भाई, अलिफ से है हमजे से, हमजा से है ना, ऐसे उसूल बनाए, ऐसे बनाए कि हर एक सिफत जो है ऐसी है कि अगर मजमूई तौर पर एक एक पर अमल कर लिया जाए तो पता नहीं कौन सा मुकाम विलायत का मिलेगा इसको। दाई सिफत से खाली होकर अपनी फिक्र के बगैर दावत देगा तो इसकी बात से दावत तो वजूद में आएगी, सिफत वजूद में नहीं आएगी। और सिफात दिल की सबसे बड़ी सिफत यह है कि ये सलीम बन जाए, कि कल्बे सलीम बन जाए, सिफा अच्छी सिफात से आरास्ता हो जाए और बुरी सिफात से पाक हो जाए। ये सब की मेहनत चाहे तो किसी लाइन से कर रहा हो, ये इसी दिल के बनाने की मेहनत है। जाहिरी अमल बता देते हैं कि इसका दिल कितना बिगड़ा हुआ है। तो उसूल क्या बयान कर दिया, जरूरी बात भी कम करो। कौन सी बात, अगर ये चाहते हो कि हम जबान के रास्ते से हमें नफ शैतान न लूटे, ये रास्ता उसे लूटने का है, ये हमें न लूटे, तो जरूरी बातें भी कम करो। अब हम तो सब जानते हैं ना, जरूरी बातें कम करो का क्या मतलब है, आप तो यही कहेंगे जब जरूरी है तो क्यों ना करो, जब जरूरी है तो क्यों ना करो, यही है नफ। और वहां है कि जरूरी भी कम करो, वहां नफ से पाक हुए, आजाद नहीं हुए, नफ के आवार से बच गए, आजाद नहीं हुए। समझदार समझेंगे कि एक जुमले में क्या क्या अल्लाह कहलाता है, ना समझ को तो खुश तकरीर है। जरूरी बातें जिसको कहा जाता है जरूरी बातें भी कम करो, इसका मतलब यह है कि जिस बात के ना करने से नुकसान हो जाएगा बस वही बात करो, जिस बात के ना करने से। और मैं देखा सुबह से लेकर शाम तक इतनी दफा ये झगड़ा घर में रहता है बीवी से नहीं नफ से कि बार बार मजमून लाके देता है, ये बात करो। तो मैं तबलीगी आदमी, मैं कहता हूं मेरा तो उसूल ये है, मैं 6 नंबर का पान मानने वाला, इसका पालन करने वाला है और 16 उसूलों को बरतने वाला तबलीगी आदमी हूं, और तबलीग में सिखाया जाता है जरूरी बातें भी कम करो। तो ये मैं जरा देखूं ये जरूरी है क्या, तो कहता है इसमें क्या गैर जरूरी है, तो फिर उससे पूछता हूं कि नहीं बोलूंगा तो नुकसान हो जाएगा, तो बोलता है नहीं ना नुकसान तो नहीं होगा, तो मैं बोलता हूं फिर नहीं करूंगा, तो फिर जल्दी से कहता बराबर है, ये नहीं कहता ठीक करो बराबर है, फिर थोड़ी देर में एक मजमून लाकर देता चाहिए करो, तो फिर उससे पूछता हूं भाई ये करूं ये जरूरी है, कहां बहुत जरूरी है, मैं नहीं करूंगा तो नुकसान क्या होगा, तो बोलता नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। तो जो बातें ला रहे ये मजमून पहले से तैयार है, खजाना है हमारे पास, इतनी बातें हम सुन चुके हैं पहले कि खजाना तैयार है हमारे पास, इसलिए ऐसे दोस्तों से दूर भागो जो यहां वहां की बातें करो। बोलो, तय करो, एकदम जरूरी बातें करोगे, बाकी बात नहीं करोगे। देखो मुंह पे ताला लगता है कि नहीं। और ये रमजान का महीना आया है इसी सबकी पूरी पूरी सहसे तरबियत करने का, इन्हीं आजा की तरबियत के लिए आया। जबान की, आंख की, कान की, दिल की तरबियत का ये महीना है। तरबियत इसे अब तक जहां किया जैसे किया, अब इसका इस्तेमाल छोड़ो, अब ऐसे आओ जैसे शरीयत से इस्तेमाल करने के लिए कहा है अल्लाह ने, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ताकि क्योंकि रमजान किस लिए आया? मुत्तकी बनने के लिए। तो इसलिए अब करेंगे अपने दोस्तों से ऐसी बात, कहने मियां तुम बैठो, तुमको कुछ समझ में आता है क्या? हाँ, हम ही बैठेंगे, क्या करेंगे? हम ही बैठे रहेंगे, आप कीजिए बातें क्या? जब यही तय कर रखा है कि नफ्स और शैतान को खुश करना है तो करते रहिए, वरना तो आज तो तय कर लीजिए, आज तो तय कर लीजिए कि भाई काम की बात करो, क्या बात करनी है करो, क्या है? अभी बोलते ना, आपसे मिलना है। तो क्यों मिलना है? तो कुछ बातें करनी है। तो कौन सी बात होगी? बोले मिलकर बताएंगे। हमने कहा सुनकर मिलेंगे, कहते हैं मिलकर सुनाएंगे, हम कहते सुनकर मिलेंगे। आप हमको उन्वान बताइए किस टॉपिक पे आपको बात करना है। तो बोलते हैं वो फला फला, मैं इस काम का हूं नहीं, मैं क्यों मिलू बिला वजह? जो आपका मौजू है मैं इस काम का हूं नहीं, और जो मौजू है तो भाई कागज पे निशान लगा के जाओ, ये बातें करनी है, नोट करके आओ, इसके अलावा बात दूसरी मत करना, इसके बाद दूसरी बात करो, नोट करके आओ, इतनी बातें करनी क्या है? अच्छा मीटिंग होती है कभी? आप कहीं के ट्रस्टी है, जिम्मेदार है, मीटिंग होती है? अरे मीटिंग होती है, सोसाइटी की मीटिंग होती है, उसमें कुछ एजेंडा होता है? एजेंडे का क्या मतलब? एजेंडे का क्या मतलब? हमें किन किन मौजू पर बात करना है, बस हम उतनी बात करेंगे। हिदायत की घड़ी 24 घंटे खुली, सोसाइटी की मीटिंग हिदायत की घड़ी, दिन भर की मीटिंग हिदायत की घड़ी, ये फोन हिदायत की घड़ी है। भाई देखो काम की बात करो, जरूरी बात करो, गैर जरूरी मत करो, देखो होगी बात तुम्हारी, चलो अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इतने शिकार हो गए कि हमें पता ही नहीं हिदायत की घड़ियां कितनी खुली हैं और नफ शैतान की राहें चायन चाले कितनी खुली। ये रमजान का महीना अपने आंख, अपने कान, अपनी जबान, अपने दिल की तरबियत का महीना है। जो इसमें ज्यादा बोलेगा पूरे साल ज्यादा बोलेगा, जो ज्यादा बोलेगा वो खता यकीनन करेगा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, जो आदमी अपनी जबान की और शर्मगाह की हिफाजत का वादा करे मैं उसकी जन्नत का जामिन। इतनी खतरनाक चीज है ये जबान, इतनी खतरनाक चीज है। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सी खूबियां, सिर्फ कम बोलना शुरू कर दे अल्लाह वाले बन जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे माहौल में बैठे हैं जिनके पास बहुत से बोलने वाले हैं, वो कम सुनना शुरू कर दे ऐसे माहौल से घिसक जाए अल्लाह वाले बन जाएंगे। क्योंकि दो बड़े नुकसान है, दोनों मजामीन की इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट तैयार करके रखते हैं कि आप देखिए आप 24 घंटा दिल के मजमून में रहते हैं। कहां रहते हैं? एक मजमून हटता है दूसरा आता है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, हर घड़ी मजमून खत्म होने को तैयार नहीं है। यही है नफ्स का शिकार होना। और रमजान आया है कि अब तक का लूटा तौबा कर ले तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। ईमान वाला अगर गलत जिंदगी गुजार चुका है, ईमान वाला तौबा कर ले, रमजान आ गया आज ही तौबा करे, जाकर दो रकात नमाज पढ़े, हे मेरे अल्लाह जो कुछ हुआ जिस जिस लाइन से हुआ हम सब से तौबा करते हैं, अब हम तय करते हैं जबान से सोच कर बोलेंगे। गलत बात कोई करता होगा, हमें आज तजर्बा है कि आदमी आता है तो फालतू बातें करता है, हम उससे कह देंगे भाई इस वक्त हम मशगूल हैं, रमजान में हम और कोई बात नहीं करेंगे, इस वक्त तुम अपना काम करो मैं मेरा काम करूं। इस तरह से लोगों से कतराएंगे, निकल जाएंगे, अच्छी जगह बैठेंगे, अच्छी बात सुनेंगे और दिल लगाकर नमाज पढ़ेंगे रमजान में, ताकि पूरी जिंदगी हमारी बन जाए, संवर जाए। देखो दोस्तों सवाब कितना बढ़ाया गया, नफिल का सवाब कितना हुआ? फर्ज का, नफिल का फर्ज का हुआ। कुरान की तिलावत बढ़ाते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन नफिलों में नहीं बढ़ाते। कहाँ नहीं बढ़ाते? नफिलों में बढ़ाते। शिकार इतना बार इतना इतना कुरान खत्म हो जाएगा, इतना कुरान खत्म हो जाएगा मेरा, इतना कुरान खत्म हो जाएगा, लेकिन दो रकात नफिल में नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? नफ्स के शिकार। बगैर देखे कुरान पढ़ो कितना सवाब, 10 नेकियां। बावजू है बेवजू सुनता हूं 1 नेकी, बावजू 10 नेकी, देख कर पढ़ो तो 25 नेकी, नमाज में पढ़ो तो 100 नेकी, कितनी? और रमजान में नमाज में पढ़ो तो 100 नेकी को 70 से जरब दो, कितनी हो जाएगी? 7000। कितनी होगी? 7000 नेकी। कितना? एक हर्फ पर। तो बुरी नगर नमाज में कितनी नेकी? लेकिन दो रकात में। हमारा तो रमजान है ना, रमजान तो नफिले छोड़ने के लिए, रमजान कहने के लिए तिलावत बढ़ाने के लिए, नफिले छोड़ने के लिए। बुजुर्गों ने लिखा है कि नफ इतना शातिर है कि जब तबीयत में इबादत का जरा जज्बा पैदा होता है, तुम लोग बैठो मुकामी अपना काम करेंगे, जब जरा तबीयत में ये तबीयत चली कि इबादत करो, क्या तो फौरन मोड़ता है तस्बीह निकालता, फौरन यानी वो तो एकदम तैयार रहता है, हाथ में पकड़ा देता है, निकालते तस्बीह। अब ये इबादत हो रही, सुभान अल्लाह भी चल रहा है, दरूद भी चल रहा है, निगाहें भी इधर उधर जा रही हैं, दिल भी मुंतशिर है, तो इबादत हो रही। जहां तबीयत चली कुछ भला काम करो तो फौरन तस्बीह देता है, और कोई कुछ इससे आगे बढ़ गया जो मजमून समझ कर गया तो उसको कहता है कुरान पढ़ो, कुरान रमजान में नाजिल हुआ, कितनी बड़ी फजीलत है, बुजुर्गों ने इत्तेमाम किया है, इतना इतना पढ़ा है। ये नफ्स की तकरीर है। इसलिए कुछ चाहता है नमाज ना पढ़ो, क्या करो? नमाज ना पढ़ो। नमाज पढ़ोगे दो दो नफिलों में, अगर कुरान पढ़ोगे फिर हमारे जैसे क्या कहते हैं, अरे अपन नमाज कैसा पढ़ सकते हैं, नफिल में कुरान कैसा पढ़ सकते हैं, अपन तो याद है क्या? अपन तो याद तो है, क्यों नहीं याद है? 10 सूरतें तो याद है, अगर एक में 8 सूरत पढ़ लिया, एक में 2 सूरत पढ़ा, फिर दूसरी रकात में ऐसे ही किया और 4 दफा ऐसे ही किया तो पाव पारा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कुरान पढ़ो में लिखा है कि यही पढ़ो, है फजीलत की, यही पढ़ोगे कुरान में तो फजीलत, और ये नहीं पढ़ोगे तो नहीं फजीलत। पछताओ कि अल्लाह मुझे याद नहीं, वरना मैं सब पढ़ता तो मुफ्त का अज्र है। मुझे याद नहीं, मैं हाफिज होता तो मैं सब पढ़ता, पूरा कुरान नमाज में पढ़ता तो मुफ्त का अज्र मिलेगा, ये कौन कहता है? ऐसे जहां सबके का नाम आएगा तो हर गरीब कहेगा सबका तो मालदार का काम। क्यों भाई? सबका मालदार का काम, सबका तो हर आदमी कर सकता है। एक पैसा करो एक दिन का, 100 दिन के 100 पैसे हो जाएंगे, नहीं कोई एक पैसा लेगा, 2 पैसा लेगा, 100 दिन के 100 तो हो जाएंगे। अब बहुत गरीब है तो मुझे 1 रुपया चंदा मिला पिछले मजलिस में, बड़ा मेरा जी खुश हुआ। मैंने कहा था भाई देखो, जब हम चंदे के लिए कहेंगे चंदा लाओ तो सब लोग बड़े बड़े लोगों को देखोगे, बड़ों को मत देखो, सबसे पहले छोटों को देखो, बड़ों को बाद में देखना, पहले छोटों को देखो। और मैं 1 रुपया भी चंदा लूंगा, तो एक आदमी चुपके से मेरे हाथ में देखे गए कि मेरा 1 रुपया कबूल कर लीजिए। मैंने ऐसे कितने गरीबों को देखा है जिन्होंने माल आते ही उसमें से निकाला कि भले ही बहुत थोड़ा है लेकिन ये मेरे रब ने मुझे भेजा है, इसमें से मैं 1 पैसा निकालकर 1 रुपया निकालकर किसी गरीब को जरूर दूंगा। उनको मालदार होते मैंने देखा, और बाजों को तो मालदार होते नहीं देखा लेकिन मालदारों से ज्यादा ऐश में रहते देखा। यहाँ आगे गरीब को धोखा देता है, क्या देता है? अरे मियाँ सदका, हमारा काम थोड़ा ही सदका, तो अब रमजान में क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे? तिलावत बढ़ाएंगे, तिलावत बढ़ाएंगे और नमाजें। भले आमाल में जिन आमाल को करते वक्त नफ्स जितना उसके खिलाफ तकरीर करे कि इसको अभी मत करो, बाद में करना, अभी रहने दो, उस वक्त उसी अमल के करने पर मुजाहिदा होगा और अल्लाह मिलेगा। ये बहुत से पूरे रमजान अच्छा गुजर जाए, पूरी जिंदगी बन जाए, उसके सब गुण बयान हो रहे हैं अल्लाह की दी तौफीक से, तो क्या करेंगे फिर हम? करेंगे जो कुछ कहा गया। और रमजान में डिश बढ़ा दीजिए घर में खाने की, ताकि औरतें पढ़ ही ना सके, क्योंकि पढ़ना औरतों के लिए तो आएगी रमजान, औरतों के लिए पकाने के लिए आया है और हमारे लिए गुस्सा करने के लिए आया। रमजान काहे के लिए आया? और जिसको बहुत शौक हुआ इबादत बढ़ा दिया, और अल्लाह कह रहा है ना रमजान भेजा गुनाह छोड़ने के लिए। अच्छा, सेहत के लिए फ्राई आइटम बहुत फायदा देता है ना, तला हुआ आइटम बहुत फायदा देता है। हकीम साहब, तला हुआ आइटम नुकसान देगा फायदा देगा? नुकसान। हकीम साहब बैठे, मुकद्दर से हकीम भी आए हैं आज। सबसे ज्यादा फ्राई आइटम कौन से महीने में खाया जाता है? रमजान के महीने में। और चने से तो इतनी गैस बनती है कि अगर पकड़ कर रख लिया जाए तो एक घर का चूल्हा चल जाए। चने से गैस बनती है? हाँ। कहने लगे आपको सब क्या फन मालूम है क्या? जी हाँ, बड़े बड़े फनकारों के साथ रहा हूं, जिंदगी खपाया हूं। कम इल्म बे इल्म होने की वजह से उतना नहीं सीखा जितना सीखने वाले सीख गए, हमने तो कुछ भी नहीं सीखा। तो ये तरगीब रमजान के महीने में ये नई नई डिशे या साल भर नहीं खाया है, देता कौन है तरगीब आपको? कभी आपने सोचा? मैं कम से कम डिश की बात कर रहा था। सूरत में एक बहुत बड़े ताजिर होने के एहसास साथ अल्लाह वाले हैं, जिन्होंने मशायख की खूब सोबत उठाई है। हजरत जी वहां इनामुल हसन साहब के साथ बहुत रहे, हर माँ अली मियां साहब की खिदमत में जाते रहे, हर कारी सिद्दीक साहब की खिदमत में रहे, हर माँ अब्दुल हलीम साहब की खिदमत में रहे, हर मुफ्ती महमूद साहब अलहमदुल्ला की खिदमत में रहे। यानी बस लाइन ही थी, अजीब नसीब लेकर आए है? और इत्मीनान से जाकर साथ में रहते भी थे। तो मेरा सूरत का सफर हुआ तो उसमें मेरी नीयत थी, मैंने कहा मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा आप कहिए मैं सुनूंगा। उस घर वाले बसित थे कि नहीं तुम्हारी तकरीर कराएंगे, हमने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सुनने की नीयत से आ रहे हैं, हम सब सुनेंगे। उन्होंने कहा मैं हजरत जी के साथ था वहां इनामुल हसन साहब अलहमदुल्ला के पास, और कई महीने वहां था मरकज पर, कई महीने मैंने हजरत के पास देखा। इफ्तारी का खजूर और पानी हुआ करता था, जमजम और खजूर, कभी कभी कोई चीज होती थी, अक्सर बहुत कम चीजें खाते थे। और फरमाते थे कि ज्यादा खाना बड़ा ही नुकसानदेह होता है, इसलिए एक चीज ये भी सो, दूसरी चीज हकीम साहब से आप पूछो, ये मैदा जिसमें जाके खाना हजम होता है, जिसमें हम डालते हैं, जो भाजों का तो गोडाउन है, पैदा ही इसीलिए हुए खाने के लिए, खाओ या खिलाओ या दावत दो या दावत खाओ या दावत करो या दावत खाओ, बस उनका काम ही है ये। तो ये मैदा जो है ना, मैदा इसमें जितने ज्यादा किस्म की चीजें डाली जाती है उतनी ज्यादा हजम में आसानी होती है ना? बोलो, सुन रहे हो ना? तो क्या बोलोगे? तकलीफ होती है। और अगर आइटम बहुत कम हो, एक दो, तो हजम में बहुत आसानी होती है। तो रमजान का महीना हमको कहीं हुक मिला है कि अपने मैदे को मशक्कत में डालो, कहीं है कुरान हदीस की रोशनी में? अपने मैदे को मशक्कत में डालो, और जब वो मशक्कत में रहेगा तो हर थोड़ी देर के बाद ऐसा इजहार करेगा कि पूरी मस्जिद गंदी होगी। इजहार मशक्कत, मैदे की इजहार मशक्कत। बोले सब चलता है यार, अभी छोड़ रहा है। तुम कहां लेकर आए शकील भाई के बयान में? ये अभी बयान करने जानता है क्या? बयान ऐसा होता है क्या? लेकिन नहीं, इस रमजान में भी, अरे यार आप छोड़ो यार, अभी क्या और बहुत से तो ऐसे हैं कि बस पूछो मत, जगह का नाम लेता है नहीं। कह रहे अपने घर में 20 किस्म का आइटम बनता है हमारे में। देखो बहुत टाइम, देखो रमजान के महीने हमारे घर में 20 किस्म का आइटम बनता है, बावर्ची ला के रखा है ना हमने। इसलिए रमजान के महीने में डिशेज बढ़ाना मत। अच्छा बताओ क्या फायदा है? जबान की लज्जत कितनी दे, भजिए की लज्जत कितनी देर लेते हो? अच्छा भजिया बहुत पसंद आया, अकबर अजीज की समोसे की पट्टी आई बहुत अच्छी है, तो वो कितनी देर खाओगे तो पता चले? मुंह में कितनी देर लोगे ये मुझे बता दो। कोई डिश बहुत अच्छी लगती है तो मुंह में कितने मिनट लेके बैठते हो, सेकंड्स के अंदर पेट में डाल देते हो? सेकंड्स के अंदर जो चीज पेट में जाती हो और जाके मैदे को खराब करती हो और हर वक्त बेवजू रहो, तो ये ज्यादा अच्छा है कि हर वक्त बावजू रहो ज्यादा अच्छा है? नेकियां कमाने का सीजन है, बावजू कुरान पढ़ोगे तो 25 नेकियां मिलेगी और बेवजू पढ़ोगे तो एक नेकी मिलेगी। और ये नेकी 25 नहीं, ये 25 को 70 से जरब दो। तो बेवजू होकर अपनी नेकियां बर्बाद करना, कमाने के सीजन में कंगाल रहना, न कमाना, ये वही नफ्स के शिकार लोग हैं। डिशेज बढ़ती हैं और एक साथ बैठे हैं उनकी मिसेज बढ़ती हैं, एक डिशेज और एक मिसेज। हमारे मुरीद हैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि लगे जोर से उनको, अल्लाह वालों को कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, खमीरा खाते हैं ताकत को बरकरार रखते हैं। क्या कोई निकाह करेगा मियां? एक अल्लाह वाला चार बीवियों से कम पे जी नहीं सकता। अगर अल्लाह वाला है तो अल्लाह ना उसको उसी ताकत देते हैं। अल्लाह ताला क्यों पूरे जज्बात को कंट्रोल में रखता है? मैं बहुत सी बातें बच्चियां सुनती इसलिए नहीं कहता आप लोग से, कभी रहिए तो मैं आपको सुनाऊं। दिन तय किए जाते हैं, आज फरागत के दिन है, चार दिन खेलने के, पांचवा दिन फरागत का होगा, छह दिन खेलने के, सातवां दिन फरागत का होगा। और देखिए किताब हयात सहाबा उठाकर, तालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद या हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया है कि रमजान के महीने में मगरिब की नमाज से फारिग होकर तीन बीवियों से जिमा करके कहते हैं अपने नफ्स से, तेरी ख्वाहिश मैंने पूरी किया, अब तू अल्लाह के रास्ते अल्लाह के लिए खड़ा हो जा, मेरी ख्वाहिश पूरी कर, पूरी रात नमाज में लगाया। ताकत इसके लिए थोड़ी दी जाती है कि यहां हमारा सर्व करो, जाए फिर अल्लाह ने बनाया, तुम्हारे बड़ी मजबूरी है तो ठीक है। अल्लाह वाले तो अपनी कमर को मजबूत रखते हैं अल्लाह की याद के लिए कि खड़े रहकर नफिलों में कुरान पढ़ेंगे, लंबे लंबे सज्दे करेंगे, लंबे लंबे रुकू करेंगे, न कि इनमें इनमें। इसीलिए अल्लाह ने कहा तुम थोड़ा सबर तो करो, 70 देंगे, 1000 साल तक सोबत करना, तुम सबर तो करो। हमारी बेसब्री हमारे नफ्स ने यहां उचक लिया आके और नए नए हवा हीरे हवाले करना शुरू कर दिया। मुरीद है मेरे इसलिए बैठेंगे तो मैं उनको सुनाऊंगा, कल अल्लाह पकड़ेगा मुझको कि भेजा था तेरे पास सुनाने के लिए, तो तूने हदिये का इंतजाम देखा था कि हदिया देता था बहुत, यहां हदिया अदा की कीमत नहीं है, यहां हदिया अदा तुम्हारी कीमत है, तुम्हारा नस पछाड़ेगा, तुम मेरे पास आओगे हम तुमको सुनाएंगे। और ये कहते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, देखो ना ये हुआ है भरों में, मुकद्दर से मिल गया निकलते निकलते तक। देखो एक नौजवान ने खुद मुझसे कहा कि जानते हो ये हजरत शाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक नौजवान ने खुद मुझसे कहा कि जानते हो लोग तुम्हारे पास क्यों नहीं आते? मैंने कहा भाई बताओ क्यों नहीं आते? कहा कि बात यह है कि लोग हराम कामों में मुब्तला है, समझते हैं कि अगर तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उनको छुड़ाओगे और उनका छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है, इसलिए नहीं आते। समझते हैं कि जिस गांव में जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछे। मैंने कहा अरे इसको तो मैं जानता हूं, तुम मुझे क्या बताओगे? हजरत शाह रसूलुल्लाह साहब है जिनके तसव्वुर से रूहानियत बढ़ती है, जिसको औरतों का शौक हो गया, औरतों के शौक में दिल में लज्जत लेकर दिल और अपनी पूरी रूहानियत को इस तरह से तबाह मलिया मेट और बर्बाद करते हैं, अल्लाह वालों को अल्लाह वालों से ताल्लुक हो जाता है तो उनके उनकी याद से रूहानियत में ज़बा होता है, कल्ब में तगय्युर होता है, अल्लाह की मोहब्बत जोश मारती। एक नौजवान ने सुना एक दिन बहुत सुस्ती थी, नफ्स ने कहा रहने दे, आज वित्र भी छोड़ दे, खाली फर्ज हो गई जो सुन्नतें पढ़ ले, आज बहुत गफलत है, आज बहुत सुस्ती है, आज बहुत थका है, आज सो जा। अल्लाह वालों के पास जाने वाला नौजवान, उसने नफ्स से रहा तू इतनी तकलीफ क्यों, तू मेरा हमदर्द नहीं है, तू मुझे क्यों समझा रहा? नफ्स ने कहा कि मैं तुझे अच्छी बात कह रहा हूं, देख तू आज दिन भर काम में कितना थका है। उसने कहा नहीं नहीं कोई चाल तो चल रहा है, कोई चाल चल रहा है। नफ्स ने कहा बिल्कुल चाल नहीं चलता, सच कहता हूं। उसने कहा अच्छी बात है, मैं जरा सोचूंगा। उस नौजवान ने कहा मैंने हजरत शाह रसूलुल्लाह साहब की बातों को सोचना शुरू कर दिया। कल थोड़ी देर के अंदर इतनी फुर्ती इतनी कुवत आई कि घंटों इबादत में लगा रहा और कोई कष्ट नाम की चीज नहीं थी। ये जो जब तबीयत में होता है, कसल है, सुस्ती है, थका है, ये सब नफ्स की तकरीर होती है। और यही मुजाहिदे का वक्त होता है, हिदायत का वक्त होता है। हिम्मत करके आदमी अपनी तबीयत का रुझान बदल दे और वहां से खींच कर इबादत में लगा दे। लेकिन इबादत में दिल लगता ही कहां है हमारा, दिल कहां लगता है इबादत में। तो शाह साहब उन लोगों में थे, क्या फरमाते हैं, अरे इसको तो मैं जानता हूं, तुम मुझे क्या बताओगे, ये अहले नफ्स लोग हैं, ये अहले नफ्स लोग हैं, आजाद रहना चाहते हैं, ख्वाहिशात की सेवा ने इन्हें पकड़ रखा है, इसलिए दूसरी तरफ आना नहीं चाहते। लेकिन इसी दुनिया में बहुत से तालिबान खुदा मौजूद हैं जो ऐसी जगहों को तलाश करते और पहुंचते हैं। इसलिए मुरीद जानता है कि जाएंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा, और आएगा तो फिर मैं उसके हदीये को नजर में रखकर उसको ना बुलाऊं, ना बोलूं ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, तुम ले जाओ अपने हद आए यहां से। तुम्हारे साथ हम मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे माल से मोहब्बत नहीं है, तुमसे मोहब्बत है। और हम जो डांटते हैं तुम्हारे नफ्स को डांटते हैं, तुमको नहीं डांटते, तुम तो हमसे हजार गुना अच्छे हो। तुम्हारे नफ्स ने यहां धोखा दिया है, यहां तुम्हारी हम पकड़ कर रहे हैं कि उसका हाथ झटक दो, और कहते तेरी ये बात नहीं सुनता। इतना शातिर है, इतना शातिर है, बताओ तो सही, अंबिया के दू बदू हुआ है। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। रमजान का महीना ऐसा आया है, अपने यहां खाने की डिशेज तय कर दो, घर वालों को कह दो तुम भी अल्लाह की याद में रहो। आखिर वक्त बेचारी भूनती रहती है मस्जिद उसके अंदर, और ये बहुत खुश होता है, कितने मेहमान हमारे यहाँ खाना खाते हैं, तो ये खुश हो गए। अरे मियाँ जाओ मेहमान अपने घर, कोई भूला भटका मुसाफिर आएगा मेरे यहाँ खा लेगा, ये मेहमानों की भीड़ जमा करने का वक्त नहीं है, ये अल्लाह की तरफ अपना दिल लगाने की भीड़ का वक्त आया है। यहाँ का नफ्स में मशगूल हो गया, मेहमान आएगा तो खाएगा, उसका इंतजाम होगा खा लेगा। मेरे हमारे घर की औरतें किसमें उलझेंगी जूझेंगी रात दिन, नहीं नहीं तुम चंद डिशे बनाओ, दो तीन बस जो अपने काम की रोज बना करती है उसमें बनाओ भी, तो ये भजिया है, समोसे है, ये सब पूरे साल खा लो, घर वालों को सिर्फ खिलाओ, रमजान जाने के बाद खिला के देखो। तीन दिन अगर भजिया खिला दिया तो चौथे दिन क्या रोज भजिया खिलाते हो, करके देखो ना तजुर्बा। अगर झूठ समझ में आता है कि शकील की तकलीफ ऐसे ही हो रही है, तुम चार दिन समोसे भजिए खाओ गैर रमजान के दिन, और फिर तुम्हारी बीवियों को गुस्सा न करो, बोले क्या रोज भजिया भजिया लगाया है तुमने, वही भजिया रमजान में रोज क्यों जरूरी। अरे कुछ गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, ये नफ्स ने इतना बड़ा शिकार कर दिया कि अच्छे अच्छे दीनदार इसी में मुब्तला हो गए। मेदे पे एक बोझ पड़ता है जब 10 किस्म का आइटम जाता है, और देखो क्या बेवकूफी की चीज है, इधर मुंह में गरम गरम समोसा जाता है, उधर ठंडा ठंडा फालूदा पीते, गरम खाकर फौरन ठंडा पानी पीना बड़ा नाफे है। अब कहते हुए बहुत डर लगता है, मैं क्या कहूं, सुनेंगे तो वो भी। एक मुफ्ती साहब आते हैं, और बहुत बड़े मुफ्ती हैं, हमने उनको गरम गरम पराठा और कबाब खिलाया, और खाते खाते उनका पानी हमने निकाल के रखा था, कहने लगे एकदम ठंडा वाला, अच्छी बात। और क्या था, ठंडा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। उन्होंने कहा हाय हाय कैसा लूटा हुआ मुफ्ती है, कैसा लूटा हुआ मुफ्ती, नफ्स ने कितना लूटा है। उसको तो हक नहीं कहने का, लेकिन जो हो हकीकत उसको कहने में हरज क्या। कई दफा देखा तो एक दफा हमने प्यार से समझाया, ने कहा मुफ्ती साहब ये ठंडा पानी गर्म खाने पर पसंद नहीं था, टिब की किताबें उठा के पढ़ लीजिए, ये जिस अमानत है इसको इस तरह से डैमेज करना ये हराम काम है, ख्यानत है। ठंडा पानी पियो, उसके वक्त पियो, खाने के बाद पानी पीने को तो अल्लाह के रसूल ने पसंद ही नहीं फरमाया। किताब उठाओ आज इसकी इतना पैदल नहीं चलता, पढ़ के बताओ लिखा है कि नहीं है। खाने के बाद पानी पीने को पसंद नहीं फरमाया, इजाजत दिया है, हालात है, मौसम है, मिजाज है, عدت ہے اندر، اس لیے اس کو چاہیے پانی، تو اجازت دے دیا، پیو پانی اجازت ہے، لیکن جتنے کم میں کام چل سکے اتنا کم پیو، اس لیے کہ ہضم میں تکلیف ہے. کیوں؟ زیادہ پانی پینے سے ہضم میں تکلیف ہوتی ہے نا، پوچھو. آج تو حکیم صاحب بیٹھے، ہضم خراب ہو جاتا ہے بولتے. اور یہاں یہ کھایا بھجیا کھایا، یہ کھایا گرم کھایا، گرم کھایا بہت اچھا لگا، ایک اور لو اور ایک ٹھنڈا پانی پیا. پورے رمضان میں نفس نے اتنے بڑے بڑے جال پھیلائے اور ایسے ایسے عنوان سے پھیلائے کہ ہر ایک شکار ہو جائے، کوئی نہ بچے. اور رمضان کا مہینہ بھیجا تھا کہ ان دونوں دشمنوں پر قابو پا لو. شیطان کو میں قید کر دیتا ہوں، روزے رکھوا کر نفس کو کمزور کروں اور اس کا گلا دبا دوں. بس بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے تو بیان ہی نہیں کرنا تھا، اتنا لمبا بیان ہوا، میں گھڑی دیکھ بھی نہیں رہا تھا. اور آپ لوگ بھی ایسے متوجہ ہیں کہ پوری توجہ ادھر ہے، اس لیے مضمون بھی آ رہا ہے. اس لیے اب رمضان میں ڈشز، ایک کام ابو ڈانگ تو کہا، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، بولیں گے بھی سوچ کر، سنیں گے بھی. بہت بولنے والا دوست ہے، بولیں گے رمضان میں ملاقات نہیں، رمضان کے بعد آ جانا. پھر رمضان تک عادت بن جائے گی چھوڑنے کی دوست کو، تو پھر چھوڑ ہی دینا. پھر ایسا دوست کس کام کو جو بہت بولتا ہو اور یہاں کی وہاں کرتا ہو. اور پھر اور کیا کریں گے؟ سوچ کر بولیں گے، سوچ کر دیکھیں گے، اور بولنے والے کی سنیں گے نہیں، اور دل کو صاف رکھیں گے. دل کو صاف رکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ دل کو صاف رکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ جس نے تکلیف پہنچایا اس کے لیے اچھی دعا کریں گے. کریں گے؟ دل چلے گا؟ نہیں چلے گا. لیکن دعا کیا کریں گے؟ وہ ضرور پوچھ لیے، وہ ضرور پوچھ لیے، ورنہ وہ شاطر، وہ پریشان کرنے والا اگر واقعی بہت غلط ہے اور آپ نے اس کے لیے کہا اللہ اسے دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما اور قبول ہوگی تو اور ستائے گا. اس لیے یہ بھی دعا پوچھئے کہ کیا کیا جائے. پوچھتے تو ہے ہی نہیں، پوچھنے کی تو عادت ہی چھوڑ دیا. کیا دعا کیا جائے؟ اے اللہ اس کو کامل ہدایت دیجئے، اس کو کامل ہدایت دیجئے. جب اس کو کامل ہدایت دے دے گا تو ستائے گا ہی نہیں. اسے کامل ہدایت دے دیجیے، اس کو آفیت کے ساتھ جی رکھیے، اس سے راضی ہو جائیے. تو یہ سب دعا کی وجہ سے اس کی بری عادتیں جو آپ کو سب ستا رہا تھا وہ سب چھوٹ جائے گی. اور اس کا عنوان اور بہت سارا ہے بیان کا، لیکن اس وقت اتنا ہی کافی ہو گیا کہ نفس شیطان رمضان کے مہینے میں نئے نئے جال لاتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ سچ میں تجربہ کر کے بتائیے. غیر رمضان میں روز مغرب بعد آپ کی بیوی چار دن بھجیا کھلاوے اور یہ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ غصہ ہوں گے، کیا روز لگایا ہے تو نے. تو اس لیے اب اتنا ہی بس ہو گیا. جو کہا اس پر اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی. اور گھر جا کر مینو بنا دیجئے، بس یہی آئٹم بنے گا، اس میں طاقت کی چیز پلا بنے گی. نہیں سمجھ میں آئے تو حکیم صاحب سے پوچھ لیجئے کہ ہم گھر میں افطار کے وقت طاقت کی چیز، سحری کے میں طاقت کی کون سی چیز کھائیں جس سے ہمیں روزے میں قوت ہوگی، جس سے ہمیں روزے میں قوت ہوگی. اس لیے جو کچھ کہا گیا میں نے اپنی دانش میں اپنا سبق اپنے لیے سنایا تھا کہ مجھے بھی اللہ توفیق دے دے. اور اگر کام کی بات ہے، اور یقیناً آپ کی توجہ کی برکت سے کام کی بات ہوئی ہے، اللہ آپ کو بھی اور جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ بھلی بات ہے تو امت میں عام کر دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ہاں اپنے روزے دیکھو بھائی، یہاں پر تراویح ہوگی تو یہ پنویل کے لوگ کچھ بیٹھے ہیں، ان کو پتا چل جائے تو ان کے پاس کوئی جلدی پڑھنے والا ہوگا تو بتا دیں گے کہ یہاں تراویح ہوتی ہے، ہوگی جلدی جلدی. کب کب ہونے والی بھائی؟ دیکھو مسجد میں تو جو ہے جیسے عام طور سے سب جگہ ہو رہی تو ویسے ہی ہوگی، تو ان کو تو جاننے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں ایک تراویح چھ دن میں ہوگی انشاءاللہ، چھ دن میں ایک قرآن پورا ہو جائے گا، اور ایک قرآن انشاءاللہ دس دن میں پورا ہوگا، اور باقی اور قرآن بھی ہوں گے وہ اپنی اپنی ترتیب سے ہوں گے، اس میں آپ لوگ کو شامل ہونا نہیں ہے. یہ دو ہے جس میں باہر کے لوگ آ کے شامل ہو سکتے، چھ دن والی میں بھی اور دس دن والی میں بھی ہے. آپ کو کوئی جاننے والا یہاں ہو جو ایسی تراویح پڑھنا چاہتا ہو جلدی والی تو یہاں پڑھ لے، اور جو جلدی سے تراویح پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ابھی ایک عمل ہوا کہ قرآن پورا ہوا، تراویح ختم نہیں ہوئی. جس کا قرآن پورا ہو گیا پھر بھی وہ اپنی تراویح پڑھتا رہے، چاہے وہ مسجد میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر، جن جن افراد کا قرآن پورا ہو گیا وہ کہیں الحمدللہ کیف سے بھی پڑھ لیں 20-20 رکعت. سمجھ گئے؟ ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات، اپنے روزے کی حفاظت کیجئے، एक छोटा सा पतला सा किताबचा है 5 रुपए का, जिसमें ऐसे मसाइल लिख दिए गए हैं कि जिसकी इस वक्त जरूरत है, और किताब से लिखे गए हैं सब, तो वो खरीदिए, पढ़िए, 5 रुपए का है, अपने दोस्तों में आम कीजिए। एक मसला कोई जान जाए, 1000 रकात का सवाब होता है। 5 रुपए में अगर आपके पास अल्लाह ने माल दिया, 50 रुपए की 10 किताबें आपने खरीद लिया, 10 जगह ये मसाइल लोगों ने जान लिया, तो कितने मसाइल और कितने 1000 रकात का सवाब आपको मिलेगा। इसलिए वो किताब खरीद लीजिए। कौन सी? अपने रोजे की हिफाजत कीजिए। और ये तरावी वाली किताब अब तो मुफ्त में तकसीम हो रही है, इसलिए मुफ्त में मिलती है तो हर आदमी ले जाता है, तो हर आदमी ले जाए, बल्कि 2-2, 4-4 ले जाकर आम करे तो अच्छी बात है, मेरा काम, मेरी नेकियां बढ़ जाएंगी। इसलिए इसको आम कीजिए, वहां है, जाओ बच्चों दे दो। बदनिगाही के 14 नुकसानात। एक किताब छोटी सी है, पहले छपी थी, फिर वापस छप गई है, इतनी छोटी सी है, वो भी लीजिए, पढ़िए, ताकि आप और हम और पूरी उम्मत बदनिगाही से बच सके। और क्या? हाँ भाई, मस्जिद के लिए भी ऐलान फिर सुन लें। और कोई हजरात, कोई भी साहब अगर नेट पर लोगों को बताना चाहते हैं कि मस्जिद बनने वाली है, चंदा भेज दो, तो सिर्फ इतना ही जरूरी है कि मस्जिद बन रही है, फला फोन पे कांटेक्ट कर, मेरा नंबर दे दें। आप कुछ टाउन करना चाहते हैं तो फला फोन पर कांटेक्ट करें, क्योंकि आगे कोई बात लिखने बताने की है होती नहीं, बहुत सारी मसलियतें होती हैं, और आदमी कुछ का कुछ बोलता है। अब बजट कुछ और था, किसी ने बजट बहुत बढ़ा के बताया किसी और को, कई लोगों का फोन आया, बोले आप तो बजट कुछ और बता रहे थे और नेट पर तो बजट कुछ और बताया गया। मैंने कहा भाई वो बजट तो है नहीं। यानी शक्लें बदल जाती हैं नकल में, इसकी वजह से बहुत से फितनों का अंदेशा होता है, हैं? इसलिए ऐसा फोन तो मैं सब अटेंड कर रहा हूं इस वक्त। इसलिए मेरा फोन नंबर 9967066614, 9967066614 और 13 भी है, ये दोनों पर आप फोन लगाकर पूछ लें। लेकिन नेट पे देने वाले ये लिख दें कि मस्जिद की तामीर के सिलसिले में कुछ टाउन कर सकते हैं तो इस फोन पे बात कर, इतने ही लिखें, इससे राशि जरूर नहीं, कोई वक्त नहीं, 24 घंटे करने, चंदा देने के लिए, लेने के लिए क्या वक्त, चंदा लेने के लिए कोई वक्त तय करेंगे, हम इस वक्त लेंगे, जब तय फोन करके दे दो। और ये देखो धोखा दे रहे हैं हमको। दुआ से तो सभी हजरात साथ दे, अल्लाह का घर बनेगा, आपको आजू मिलेगा। मेरे नफ्स ने मुझसे कहा, जिसका जी चाहे उठ के चला जाए, ये बात सुनना चाहे तो सुन भी ले, मेरे नफ्स ने मुझसे कहा जब मैं थक गया चंदे के लिए दौड़ के, तो मेरे नफ्स ने कहा बिला वजह एक काम छेड़ के बैठा तू, अरे अल्लाह का घर है कोई भी बनवा देता, ये अल्लाह का घर है कोई भी बनवा देता, और तेरी कमजोरी तेरी बीमारी को तूने देखा नहीं, इतना बड़ा काम अपने सर पे ले लिया जो तेरे बस का नहीं, बिला वजह इसमें हाथ डाला तूने। ये नफ्स ने मुझे तकरीर किया और हिदायत की घड़ी हरदम खोली है। अल्लाह ने दिल में डाला, देख मस्जिद मेरे नजदीक वो मुकाम रखती है कि इस दुनिया की जमीन को जन्नत में पहुंचाऊंगा, तो जो बनाएगा उसको कहां पहुंचाऊंगा। नफ्स ने तकरीर किया तो अल्लाह ने भी समझाया ना कि जो जन्नत, ये मस्जिद की जमीन जन्नत में उठाई जाएगी, तो जो बनाने वाला होगा वो कहां जाएगा। हमारे आजमगढ़ में सुफीर भाई हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनका फोन आया, मैंने उनसे कहा कि सुफीर भाई दुआ कर दो अल्लाह ताला मस्जिद बनवा दे। कहने लगे हाँ अल्लाह पाक सबसे ज्यादा गरीब है ना, उन्हीं का घर नहीं बनेगा, सबका बनता है। हमने कहा यार कैसी ऐसी बात कह दी अच्छी सी, कि अल्लाह पाक सबसे गरीब है क्या जगील भाई, उनका घर नहीं बनेगा। अरे जो सबका घर बनता है तो अल्लाह पाक का भी घर बनेगा, उसमें क्या टेंशन लेते हो। हमने कहा बहुत अटेंशन कर दिया आपने हमको, अल्लाह ताला हर फितने से हिफाजत फरमाए, हर भली जगह जान माल वक्त को लगाने की तौफीक अता फरमाए, जहाँ के लगाने से वो खुश होता है। सुभानअल्लाह व हमदही, सुभानअल्लाह व हमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।